जनार्दन जगत बंधो शरणागत पालक त्वं दास 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 दासानां दासत्वं देहि मे प्रभो दासत्वं देहि मे प्रभो। आज इस भवन में आप जितने भी प्रभुगण मातागण उपस्थित है, आप सभी को श्री नाथ जी के द्वार में विशेष स्वागत अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो यहां उपस्थित है श्री नाथ जी के दर्शन कर चुके होंगे। नहीं नहीं क्या? सही बात है, भगवान के दर्शन तो कान से करते हैं, आंख से तो उन लोग करते हैं जो भीड़ भड़क में जाना चाहते हैं, है ना? नहीं तो आप लोग दर्शन करने के लिए बैठ गए आकर के। लेकिन जानते तो हैं, नाथ शब्द का अर्थ जानते ना, पालन करता, रमानाथ, लक्ष्मीनाथ, राधानाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, चार भुजानाथ, नाथ होते हैं। तो ये ऐसे कुछ नहीं, वो श्रीनाथ, वो तो केवल श्रीनाथ जी हैं, सभी के लिए नाथ है, नाथ मतलब स्वामी। तो जो श्री नाथ थी नाथ जी के द्वार पर आया है उसको कभी फिर अनाथ नहीं समझना चाहिए, फिर उनका बदनाम होगा। नाथ के पास आकर आपको अनाथ मानेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो उनके लिए चैलेंज है ना? नहीं, क्योंकि ये सबके लिए श्री नाथ है। तो इस विग्रह को बारे में थोड़ा इसे बताऊंगा, इसे सचमुच ये बताना चाहूंगा कि मैं ये मंच पर ये जो यात्रा में बोलने के लिए ना तो अधिकारी हूं ना बोलने के लिए मैं प्रस्तुत ही था, लेकिन किस परिस्थिति का इसे चाल चला ताकि अथॉरिटी लोगों का आदेश मुझे मान करके यहां पर आपके सामने आ करके बैठना पड़ा, और आप लोग को अभी कुछ समझ सहन करना पड़ेगा। तो श्री नाथ जी के जो विग्रह आप दर्शन कई कर चुके हैं, वो कई करेंगे, कई जानते भी हैं, वो विग्रह भगवान कृष्ण के ग्रेट ग्रैंड सन श्री ब्रजनाभ ने जब ब्रज के राजा बने तब भगवान कृष्ण के स्मृति के लिए लगभग 20 विग्रह बनाए थे, ब्रज के अन्य अन्य स्थान में उनको प्रतिष्ठा किए थे। उस 20 भगवत स्वरूप में जिसमें से भगवान शंकर के चारों स्वरूप था, देवी के चारों स्वरूप थे, और बाकी सारे भगवान के स्वरूप थे। तो इनमें से ये गोपाल विग्रह था जिनका नाम तो था गोपाल लेकिन बने सबके नाथ। तो गोपाल जी स्वयं अपने परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं इसका अधिकारी हूं, इस ब्रज का अधिकारी तो मैं ही हूं, यहां तक कहते थे। तो उनको विग्रह जो श्री बज्रनाभ ने बनाए थे उनको ऐसे प्रेरणा मिला था इस विग्रह के लिए जो ब्रज के नाथ के रूप में बनाए थे, जिसको जो आगे चलकर श्रीनाथ बने। उस विग्रह के यद्यपि द्विभुज है, कृष्ण ही है, लेकिन देखेंगे उनके वाम हस्त ऐसे है और दक्षिण हस्त ऐसे है। जो देखे हैं वो देखे हैं, जो नहीं देखे हैं फोटो देखे हैं सुने हैं, नहीं तो देख लेंगे। ऐसे यही है विग्रह की खासियत, ऐसे है क्योंकि इसमें क्या सिंबल क्या दिखाते हैं भगवान, ऐसे करके गिरिराज धारण की जय। ये गिरिराज धारण की लीला, वाम हस्त के कनिष्ठ अंगुली में गिरिराज धारण किए हैं, अभी तक किए हैं, हाथ उठा के रखें, अभी हाथ नीचे नहीं किए, मतलब उठा रखे हैं अभी भी, अगर छोड़ देते तो हाथ नीचे कर लेते, नहीं अभी भी उठा रखे। और दक्षिण हस्त ऐसे किए, हाथ कभी कभी अब ऐसे करते ना, नहीं कमर में हाथ रखते हैं, कब करते हैं, बैक पेन होने से थक जाते हैं, ऐश्वर्य दिखाने के लिए, किसी को कन्विंस करने के लिए कोई बात कहते हैं और सचमुच विश्वास करे तो ऐसे खड़े हो जाए, तो मतलब आसान बात है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, क्या समझ रहा है मुझे, तो ऐसे तो अति तुच्छ बात है। इस भवसागर को पार कर लेना ये तो कमर की तक ही है, ऊपर तक है ही नहीं। भक्तों के पालन करने के लिए, किसी को विपद से रक्षा करने के लिए ये सब काम बोलते हैं, कुछ नहीं तू मेरे पास तो आ, कमर में हाथ देकर खड़े हैं, क्या है? एक में रक्षा करते हैं, उसमें विश्वास दिलाते हैं दूसरे हाथ में, ये विश्वास रखो कि मैं हूं, वो फिर डर कोई चिंता की बात नहीं। डाउट तो देखो मैं पहाड़ उठा चुका हूं, और उनके जो स्वरूप है बाल स्वरूप है, 7 साल की उम्र ही तो है, हम लोग अगर 7 साल की उम्र में 7 किलो पत्थर एक दिया जाए उठाने के लिए तो 2 हाथ में भी तो नहीं उठा पाएंगे दशांगुलम में, लेकिन भगवान ने ये दिखाते हैं। तो खैर उनको ऐसा क्यों होना पड़ा, ये विग्रह को बनाने के लिए क्यों प्रेरित हुए श्री ब्रजनाभ ने, क्या खासियत है? और उसको बोलते हैं कि पूरे ब्रज के अधिकारी विग्रह वही है, यस, क्योंकि भगवान ऐसे हमारे उपास्य देव भगवान कृष्ण तो प्रकट हुए थे जेल में आधी रात में, जब उनका माता पिता भी अरेस्टेड थे, और उसी रात ओवरनाइट ट्रांसफर हो गए दूसरी जगह, हाँ जा करके वहां नंदगोप में गोकुल में जाकर रहने लगे। तो ये गोकुल का लीला है, वृंदावन का लीला है, वृंदावन लीला के विग्रह है। जब भगवान वृंदावन में केवल 7 साल की उम्र के थे उसी समय का ये लीला है। वृंदावन में भगवान ने जब लीला करते थे प्रतिदिन असुर को बद्ध करते थे, ऐसे कहा गया है कि भगवान जब अपने साथियों के साथ खेल करने जाते थे तो भूल जाते थे कलेवा करना, खाना पीना भूल जाते थे, इतने मग्न हो जाते थे खेल कूद में। तो उनको भगवान को खाना भी है, उनको याद किसे रहेगा, भूख का याद नहीं रहता, तो इसलिए एक असुर आता था, वो जब मरता था तो उनको याद आता, थक गए चलो कुछ खा पी लेते हैं, एक आउट हुआ, एक सीरीज हुआ तब ब्रेकफास्ट, दूसरा सीरीज में लंच, तो ऐसे ऐसे आउट होते थे। वो केवल भगवान के लीला के सहायता करने के लिए आगे मरते थे। अब कंस तो अपना काम करता था, कंस खुद नहीं जा सकता था वृंदावन, तो इसलिए चुन चुन करके असुर भेजता था कि मार के आए, बचपन से अभी मिटा दे, लेकिन उनको पता नहीं था बेचारा आते तो थे लेकिन वन वे रिजर्वेशन होता, नो रिटर्न, वन वे सब आते थे, अरे डेड बॉडी भी वापस नहीं जाता था, केवल मैसेज जाता था कि वही काम मर गया उनका। खैर भगवान ने तो वचन दे रखे हैं, वो भी तो अपना वचन पालन करेंगे, जद गत्वा न निवर्तन्ते, निवर्तन होगा ही नहीं, तद धाम परम मम, उस परम धाम वृंदावन जो गया फिर निवर्तन कैसे होगा, वो तो वहीं के रहेंगे, वन वे टिकट लेकर जाना पड़ता है उनके वचन है। तो जितने बाकी असुर था भगवान तो उसको बद्ध किए, लेकिन दोनों थे जमुनदान जी, इसको भगवान ने मारे नहीं, क्षमा कर दिए, अद्भुत क्षमा किए। अभी तक ये क्षमा के बारे में सोच करके कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं बड़े बड़े आचार्य लोग भी, क्यों? ये दो विशेष बात था, एक था देवराज इंद्र जिन्होंने समुच्चय ब्रजवासियों को गोप गोपी ग्वाल बाल गाय बछड़ा तक को पेड़ पौधे तक को साफ कर देना चाहता था, समुच्चय ब्रज को ध्वंस करना चाहता था, ध्वंस करने के लिए पूरी कसर किया, अपना पास जितने क्षमता था जितने शक्ति था और दूसरे से लोन लेकर आया, सपोर्ट भी लिया दूसरे से, हाँ वायुदेव आदि अग्निदेव आदि से बुलाया, बुला करके सबके सपोर्ट ले करके, यहां तक कि उनके अंडर में जितने अधिकार था वज्र मारना बारिश करना वो तो किया ही था। एक टांकी होता है इमरजेंसी टांकी, वो केवल प्रलय के समय में उसको उसका क्या बोलते हैं उसको टूटी खोलते हैं, तो इमरजेंसी स्टॉक में था, उसे बोलते संवर्तक मेघ का, वो तो केवल प्रलय काल में उसको रिलीज करते हैं, उसको वो टूटी क्या बोलते हैं गेट पास भल्ब खोलते हैं उसका, तो पानी निकलता है खूब इतने मोटे से, तो इतने गुस्से में आ गया था इंद्र, इतने अपने अहंकार के कारण इतने चूर चूर हो गया था, उस इमरजेंसी टांकी के सारे भल्ब को रेंची खोलकर मंगाकर खुलवा दिया, मोटे मोटे होश पाइप था, बोलते हाथी पैर के समान हाथी सुंड के समान पानी इतने फवारे की तरह गिरने लगा। अब अंततः सात दिन तक वो वायुदेव को बुलाकर भेजा, उनको भेजा बोला सब जाओ पूरी पावर में, और आप स्वयं भी आया अपने गाड़ी मतलब ऐरावत से चढ़ करके, जो सबसे पावरफुल अस्त्र उसको मिला था भगवत कृपा से वज्र, उसी को लेकर आया हाथ में, और कंटिन्यूअस 7 डे एंड 7 नाइट उन्होंने डबल ड्यूटी किया, डे नाइट ड्यूटी, किसी को छुट्टी नहीं दिया, पूरा वीकेंड तक पूरी प्रयास किया, हाथ दर्द करने लगा उसको वज्र मारते मारते कंटिन्यूअस हाथ बिजी था, और वायुदेव बिजी, सभी पूरी ताकत बिजी करके तब जाकर के मिले, बोले तो अब तो देखने के लायक नहीं होगा, नक्शा में उसका स्थान मिट गया होगा, ब्रज का नक्शा में कोई नाम ही नहीं होगा, बैठ करके हाथ दर्द कर रहा था, मसाज मैन बुला के मसाज कर रहा था, बाकी सब बैठ के तो भेजे बोले जाकर देखो कोई फोटोग्राफ लेकर, फोटोग्राफ में कुछ होगा ही नहीं, इतने सारे हुई एक्शन लिए। तो जो दूत गया वृंदावन में और देखा, देख करके आया, बोला महाराज बोलूं ना, क्या बात बताओ, कुछ है चिन्ह वर्ण ना, मुझे शर्म लगता है बोलने के लिए, मुझे बोलने में शर्म आता है, मैं क्या कहूं ना, क्या ना, भला एक धूल के कणा गिला हो कोई ये पेड़ के पत्थर भी गिरा हो तभी कुछ हो सकता, आप सभी पूरे देवताओं के राजा, बाकी बड़े बड़े देवताओं का पूरी कसर वीकेंड तक कंटिन्यूअस चला, वही पेड़ के पत्ता भी नहीं गिरा, एक धूल भी नहीं गिला हुआ है, कैसे हो सकता है, उनको विश्वास ही नहीं हुआ। इतने वज्र के प्रहार, इतने वर्षा, इतने पत्थर, इतने हवा, इतने बिजली के, ये सब किसी के ऊपर कभी नहीं किया था, रिकॉर्ड है, उसका कोई प्रभाव नहीं। सार विश्वास नहीं करेंगे तो खुद जाकर देख लीजिए, उनको विश्वास नहीं हो रहा था, खुद गए और दो चार देवता साथ में गए, हाउ कैन इट पॉसिबल। अब जाकर के देखे, स्नाप लेने के लिए हाथ कांपने लगा देख करके उनको लगा कि अरे ये कैसे, क्योंकि तब तब तो भगवान छोड़ दिए थे गोवर्धन को, सारे सब बाहर आ चुके थे, अपने मजा से रहते थे, कोई बात। तब उनका दिमाग आया, तो भगवान ने इस गोवर्धन धारण किए, इंद्र ने जब पूरे ब्रज को समुच्चा सत नाश कर देना चाहता था, केवल ब्रज नहीं, ब्रज के जितने ब्रजवासी थे सभी को मार देना चाहता था, भगवान ने उसे क्षमा कर दिए, पूरा क्षमा कर दिए, कुछ नहीं गड़बड़ हुआ उनका। एक तो एक केस है, दूसरी केस था भगवान ने एक बहुत बड़े खतरनाक जो पूरे ब्रज के लिए डेंजर था उसको भी माफ कर दिए, मारे नहीं। वो था महासर्प कालिया। आप भगवान सिन्हा जी के विग्रह दर्शन करेंगे ढंग से तो केवल उसमें देवदर्प दलन की दृश्य नहीं है, इंद्र को मान मर्दन करने के लिए पर्वत धारण कर डाले भगवान, ये नहीं, आप देखेंगे उनके शरीर में एक नाग भी है, सांप की दिखाई पड़ेगा, और नाग दलन भी किए थे, वो दोनों दलन दिखा रहे हैं वो, क्योंकि दोनों ब्रजवासियों के लिए विपद संकुल था, बनकर आए थे। उस महासर्प कालिय ने आकर के ब्रज में प्रवेश कर गया, आके प्रवेश कर गया, और कुतो इतने भय के कारण था तो रहने वाला फिजी का, हाँ, रमणक द्वीप में रहने वाला था, सारे सर्पों का कैपिटल वही था, लेकिन हुआ क्या कि गरुड़ जी, यद्यपि भगवान बहुत सीनियर डिवोटी है गरुड़ जी, वो भगवान के वाहन है, लेकिन फिर भी चार नियम हमारे तरह नहीं पालन करते थे, उनका नियम अलग है, वो तो सांप वगैरह ब्रेकफास्ट लंच में उन्हीं को लेते थे, कुकिंग भी नहीं करते थे, सीधा डायरेक्ट, कोई चूल्हा फूला मसला मछली नहीं जरूरत होता था, सीधा लेते थे, और वो जाते थे जब चुन करके इसको लू उसको लू, ऐसे नहीं, वो आया गांव के गांव उजाड़ के खा जाते थे सर्पों के। सांप लोग ने जा करके खूब दरखास्त किए, पेश किए, अनंत देव शेष देव भगवान की तरफ कंप्लेन पहुंचा, भाई जब खाना है जीव जीव से भोजन आपने नियम बनाया, एक जीव हमको खाएगा, लेकिन को डिसिप्लिन करके तो खाए, ये क्या है ना, नहीं कोई श्रृंखला तो रहे। तो भगवान ने फिर गरुड़ जी को बोले, देखो ठीक है तुम खाने के लिए राजी हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन को एग्रीमेंट करो। तो भगवान की बात को भक्त लोग मानते हैं, तो गरुड़ जी भगवान की बात मान करके आए, पूरे पंचायत बैठा सांपों का, जितने बड़े बड़े मुख्य बड़े बूढ़े थे सब बैठे, और बाकी कोई लोग आए विटनेस, तो गरुड़ जी के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ कि देखो गरुड़ जी आप आए, आप अपने पॉइंट बता, हम अपने पॉइंट बताते हैं, कोई करते हैं, चाहे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, डिसिप्लिन में आप अपने भोजन करें, हम भी ठीक से रहें, नहीं तो किसी गांव में कब आटा कदे उजाड़ जाते हैं हमें पता नहीं, कब एक्सपायरी डेट आता है कुछ तो पता चले। तो गरुड़ जी बोले ओके, तो विचार होकर ये तय हुआ कि एक पेड़ होगा उस द्वीप में, बोले मैं इसी जगह पर लैंडिंग करूंगा, इधर उधर नहीं जाऊंगा, फिक्स यही मेरे पोर्ट, यही लैंडिंग करूंगा, और आप इतने हजार सर्प और इतने बाकी सारे खाद्य पदार्थ आकर यहां डिपोजिट यही रख देना प्रतिदिन इस समय में, मैं ठीक 12 बजे आऊंगा, ब्रेकफास्ट स्किप करता हूं, वन टाइम करूंगा भोजन। हाँ इतने ज्यादा, तो फिर वो बोले यही लैंडिंग करे, इस समय से रखता मैं आकर खा के चला जाऊंगा, कोई डिस्टर्बेंस कुछ नहीं, बस कहीं जाऊंगा ही नहीं। तो वही एग्रीमेंट के हिसाब से सारे सर्प ने अपना टर्न किए कि आज हमारा बारी है, इस गांव का बारी इस समय है, आप चले जाओ वहां जाकर बैठो, और इतने सारे पकवान खान पान सो ले जाओ वहां बैठो। गरुड़ जी आते थे अपना खाते थे, खाकर चले जाते थे, कहीं और इधर उधर जाते थे, टेररिज्म बंद हो गया। तो कुछ साल तक तो चला शांति से, लेकिन कभी कभी यंग लड़के कई अगर थोड़ा शक्तिशाली हो जाते हैं तो उनका उत्पात हो जाता है। तो एक सर्प हुआ, एक कालिये ने जब जन्म हुआ बहुत शक्तिशाली था, और जब यंग हुआ टीनेज हो गया था तब तो उनका तो बड़े रकब दिखाने लगा। तो एक ग्रुप बनाया उनका, अपना एक टेररिस्ट ग्रुप बनाया, ग्रुप बना करके जो बड़े बूढ़े सर्प थे उनको बोला कि हम इनको नहीं मानते, आप इनके लिए सब गांव उजाड़ते, क्यों उनको देते खाने के लिए, हुई जी उनके दे ना रे वो खा जाएगा सबको, इसके लिए हम एग्रीमेंट किए, नहीं नहीं हम नहीं मानते, इतने शक्तिशाली आम है उनको सामना करेंगे, ये करेंगे। अब देश स्वाधीन करने के लिए आजाद हिंदी पार्टी बनाया, कि जो किया किया अपने सर्पों की तरफ से वो आपने पार्टी बनाया, आपने पार्टी बोला करके खूब आंदोलन छेड़ा, बोला हम नहीं मानते, कई उनको अपने माता पिता अपने संबंधी समझाए, रे बदमाश मत करो, इसे कर करो, गरुड़ जी है, हमने अंदर गरुड़ जी है, चिड़िया है, क्या है वो? अब माना नहीं, बदमाश था उनके पार्टी लोग मिल गए तो गर्व अहंकार से चूर होने लगा, अपने को घमंड था, बल था। और ऐसे भाग्य क्रम में उन्हीं के गांव के टरना के पड़ा, उनके परिवार के पाली पड़ा कि आपके तरफ से जाना है। आलिया बोला हमने किसी को नहीं भेजेंगे, नहीं जाएंगे। अरे इसी से मतलब मैं जाऊंगा, आप सौरभ में जा रहा हूं और मेरे पार्टी जाएंगे, अब गरुड़ जी उसके बाद कभी आएंगे नहीं, ऐसे मजा चखाएंगे, उन्हें क्या समझ रखे हैं। तो कुछ लोग तो उनको विश्वास करते, बोले हे बड़े गुंडा कुछ करेगा। तो गया गरुड़ जी ने, बाकी कुछ खान पान लेकर नहीं गया, अकेले बैठा, उनका पार्टी लोग को बोला सब रेडी रहो, पिटाई करेंगे उनके, गरुड़ जी रेडी रहे। गरुड़ जी देखो बोले आज हो के आ गया, कोई है ही नहीं, जो मेरे भोजन के जो प्लेट है जैसे कुछ है ही नहीं उसमें, एक बैठा है नाक, बोले ये क्या करेगा, एक में से क्या होगा, दिन का भोजन में एक टाइम लेता हूं, ये क्या बैठा है। अब आश्चर्य होकर के लानी मुझे हो क्या गया, क्या करूं, जो आए तो आकर बैठे, बोले क्यों नहीं, तो काले उठा, उठ करके उनको तो अनशन बकने लगा, तुम ऐसे हो। गरुड़ जी बोले देखो शांत हो जाओ, तुम कौन है, तुम्हारा आईडी क्या, तो अपना नाम बता। खूब फुतकार कर कंपन गर्जन कर, बोले देखो तुम ना मेरे वजह से मुंह बंद किया, आज से आप नहीं आ सकते, खा नहीं सकते, यदि आपको कुछ हम साथ लड़ करके देखो चैलेंज क्या फाइटिंग के लिए उनके साथ। गरुड़ जी बोले देखो तुम हमारे ब्रेकफास्ट के लायक भी नहीं हो, तुम्हारे साथ लड़ना मेरे इज्जत की सवाल है, हम तुम्हारे साथ नहीं लड़ते। नहीं मर्द कालिया तो गर्भ में चूर हो करके आप पूरे पावर से फन उठा करके डसा उनको, फर्स्ट उनके ओर से वार किया, दो चार बार गरुड़ जी के बड़े बड़े पंख था, पंख में मारा, गरुड़ जी के पंख में कालिया का ये चोट कुछ काम नहीं किया, इतना ही लगा जैसे कोई पागल बड़ा हाथी हो, बहुत बलशाली बड़े पागल हाथी हो, वो उनको कोई फूल के गुलदस्ता, गुलाब के फूल के चार पांच गुल के एक गुलदस्ता बनाकर फेंके तो कितने जख्म लगेगा उनको, कितने कष्ट होगा। तो इतना भी नहीं लगा उनको, कुछ नहीं हुआ। तो काले ने चार पांच बार तो उनका पूरी ताकत लगा चोट मार दिया, कुछ हो नहीं रहा उनका। तो गरुड़ जी बोले तू बहुत ही ना मारता, तो मैं भी एक थोड़ा दो ज्यादा झांप नहीं मारे, एक पंख उठा करके एक पीट दी, क्यों पंख में, हाथ से नहीं मारे यहां पर पकड़े नहीं, पंख से उठा, इतनी बार मार रहा है तो पंख उठा करके पंख से पीट दिए उसको, वो इतने जोर से आघात लगा, मार लगा उसको, वो सीधा व्याघ्र किया, व्याघ करके प्राण भय से भागने लगा, इतने तेजी से उनके जो पार्टी लोग थे तो भाग ही गए थे पहले से, भागने लगा, उनको इतने कष्ट हुआ उनको उनके पंख के प्रहार से, लगा कि मरी नहीं गया, इतना ही बहुत बड़ा देगा उनका मार देने, जान से कितने पावर है उनके, बाप रे बाप। और गरुड़ जी तो फ्लाइट में जा रहे थे, वो शिप में जा रहा था, लैंड पानी में जा रहा था, ओ भाई एयर, ओ भाई वाटर। अब गरुड़ जी ने बोले तू तो छोड़ूंगा नहीं, तू कहां जा रहा है, रे बाप रे बाप सुन करके और तेजी से लगा पानी से भागा, भाग करके सोचा कहां जाऊं, गौड़ जी मेरे पीछा कर रहे कहां जाऊं कहां जाऊं, पानी में खूब अगाध जल में घुस जाता था, इधर जाता था, लेकिन डर हार्ट बीटिंग बढ़ चुका था, इतने कंपित हो रहा था, क्या करूं कैसे बचूं। तो जाकर के तुरंत अपने नेटवर्क खोल करके गरुड़ प्रूफ एरिया ढूंढा, सर्च मारा गूगल में, तो उनको पता चल गया नेट से एक गरुड़ प्रूफ एरिया है, कहां है, ब्रज में है, जमुना किनारे एक लेक है, उस लेक इतने सुंदर है, इतने सुंदर जल, इतना बढ़िया जगह, लेकिन गरुड़ प्रूफ है, वहां गरुड़ जी नहीं जाएंगे, ये पता लगा लिया उन्होंने। अरे पूरा शक्ति लगाकर भागा वहीं पे, क्यों गरुड़ जी नहीं जा सकते यहां, क्योंकि वहां पे एक किंवदंती है, वृंदावन में एक तपस्वी रहते थे, ऐसे लोकाल थे वो, उनका नाम था सौवरी मुनि, तो उन्होंने खूब तप जप कर रहे थे, उनको लगा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आजकल तभी जमाने में तो कुछ फ्लैट नहीं था, गाड़ी घोड़ा भी नहीं, तभी भी बोल रहे थे डिस्टर्बेंस है, कहां जाओ डिस्टर्बेंस है, तुझे बढ़िया स्थान में डिस्टर्बेंस लग रहा, बोले नहीं पर्वत के चोटी में डिस्टर्बेंस, बोले कहां जाओ, बोले पानी के अंदर जाऊं, उनके योग शक्ति ऐसा था कि पानी के अंदर भी वो रह सकते थे। जमुना जी के इस हृदय में चले गए, जमुना जी के साथ हृदय था, जमुना जी की मुख्य धारा नहीं था, उसे कनेक्टेड था, बड़ा लगभग 8 माइल चौड़ा और लंबा का इतने बड़े लेक था। इस सुंदर लेक बहुत सुंदर कमल के फूल आदि हुआ करता था, वहां पर अगाध जल था और इस लेक के अंदर सुंदर रथ के अंदर काली सोबरी मुनि जाकर उसके अंदर पहुंचे और अपना योग शक्ति के अंदर पानी के अंदर अपना जल महल बनाए, आपने कुटिया बनाकर पानी के अंदर, पानी के अंदर तो कोई जाता ही नहीं, कोई रहा, हम लोग तो पानी में मर जाएंगे 2-4 घंटे में तो, लेकिन उनका शक्ति था, पानी के अंदर रह करके अपना भजन किए। लेकिन पानी के अंदर से ना हम लोग नहीं जा सकते, ऊपर के स्थल भाग के लोग, लेकिन जलचर लोग तो जो पानी में रहने वाले वो तो जाते थे। वो देखे मछली लोग, बोले हमारे ये बाबा जी आ गए हमारे कॉलोनी में, तो उनके साथ उनका परिचित होने लगा, फ्रेंडशिप हो गया, है ना। कुछ ज्यादा दिन रहेंगे तो धीरे धीरे फ्रेंडशिप हो जाते, क्योंकि वो मुनि लोग होते हैं, सुबह उठते हैं ना तो क्या अपना काम करते हैं, किसी के परी नहीं करते, देखे किसी जेंटलमैन भजन करता है, अच्छा उनके साथ अच्छा दोस्ती हो गया। तो आपने अच्छा मित्रता से गरुड़ सोबरी जी जल के अंदर थे, तो एक दिन हठात गरुड़ जी घूमते फिरते कैसे चले गए थे वहां। अब उनको तो भाई कहीं से खाना मिल जाए खा लें, उनको क्या है, लंच टाइम हो गया था और यह कभी गरुड़ जी नहीं गए थे। तो वहां एक कॉलोनी के जो सबसे मुखिया मछली था, सबसे विशाल मच्छर, वो अपने परिवार के साथ ऊपर उठा था, गरुड़ जी का नजर पड़ गया, फट से पकड़ लिए उनको, पकड़ करके निकल गए, खा गए, और 2-4 कुछ और भी आसपास उसको भी खा ली। अरे इतने हल्ला गुल्ला हो गया, इमीडिएट मर्डर हो गया गांव के जो नेता थे मुखिया का, अब क्या। तो हर पर कई लोग मर्डर दौड़ करके आए, इतने डर गए थे, सब घर बाड़ी बंद करके चिल्लाने लगे, क्या हो गया क्या हो गया, इसे मर्डर हो गया, इसे मार दी, रो धो करके उनके परिवार के लोग सब दौड़ करके बोले यही एक ही है कुछ कर सकते हैं, आकर खूब सर पीट करके गिड़गिड़ाए रोने लगे उनके सामने, सोबरी जी का सामने। बोले देखिए जी आप कुछ कीजिए, हम सब आपके शरण में हैं, आप ही एक है हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आप मछली नहीं है, कुछ कीजिए, आप बड़े तपी है जपी जोगी जो भी है। तो उन लोग के साथ मित्रता हो चुका था, उनके दुख उस तपोघन ने उनके अंदर दया आया सहन के, बोले क्या बात है घटना, ऐसे ऐसे है, देखो बैठाया अभी 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 खा लिया, सीधा पकड़ा खाया, मुखिया गए और इतने लोग सो खा गए, पता नहीं अब हम डर के मारे जा रहे हो कब समागा हमको सब खा जाए, खूब रो रो के डर के हाथ जोड़ के पुकारे। तो उनके कहने पर सोभरी मुनि अपने तपस्या कुटिया छोड़ करके ऊपर उठे, पानी से ऊपर उठ करके गरुड़ जी को देखे पेड़े बैठे थे, उसको गुस्से में बोले बोले गरुड़ जी आप इधर क्यों आए, व्हाई यू आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस हियर। गरुड़ जी बोले भाई आप अपना भजन करना भजन करो, आपके विषय क्यों पढ़ना है, मेरे खाद्य के मेरे साथ अपना संबंध है, ना मेरे खाने के समान है, मैं खाने वाला हूं, अब मैं खाऊंगा। और मछली को स्थल भागो मिलते हैं, पेड़ों मिलते हैं क्या, पानी मिलेंगे पानी के पास में खाया, और तो नहीं खाया, खाया उसमें क्या है, वो पानी में रहते हैं, पानी के पास आया उनको उठाया खाया, मुझे तो वही मेरा भोजन है, आपको पता नहीं क्या। नहीं 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 आप और कैसे यहां नहीं खाते, अरे यहां खाएं, मेरे कोई लिमिट है थोड़ी गया, यहां खाऊं जहां पानी वही खाऊं। नहीं अब वो तो बिल्कुल उनके तरफ होकर के सोबरी मुनि ने मछलियों की तरफ होकर के अब गरुड़ जी को डांटने लगे, जबकि गरुड़ जी सोबरी से काफी सीनियर थे, उनके सामने तो बहुत जूनियर थे वो, लेकिन फिर भी मछलियों के सामने अपना का अहंकार देखा कि मैं आपकी रक्षा करता हूं, देखा अभी देखो कैसे करता हूं, ऐसे कर करके गर्भ में आकर गरुड़ जी को खूब डांटे और डांट करके बोले देखो अगर दोबारा ऐसा अटैक कर तो मैं अभिशाप देता हूं, अभिशाप दे देगा अगर दोबारा आकर के यहां इस प्रकार अटैक किए मछली खा गए आपके मृत्यु हो जाएगा। गरुड़ जी सुने हंसने लगे, बोले देखो ये उनका है कितना पावर, थोड़ा सा दिन थोड़े दिन कर लिया करके इतनी मानता हूं। गरुड़ जी चाहते तो वही दो थप्पड़ मार के उनको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे उनको, लेकिन भगवान के भक्त है, भगवान के भक्त को कोई अपमान भी कर दे, कोई तकलीफ भी दे दे, कोई गाली भी दे दे, वो सहन करते हैं, वो सहन करते हैं। वही भगवान के भक्तों का महान गुण होता है। किसी भी प्रकार से कोई उनको तिरस्कार करे, कोई उनको प्रहार करे, कोई उनको ठग दे, चिटिंग करे, कोई लांछित करे, उनको मारे पीटे, कुछ भी करे, तो प्रतिकार कुछ रिएक्शन नहीं लेंगे। ये भागवत में निर्णय किया गया, ये भक्तों के लक्षण है, क्योंकि तद भक्त प्रभाव, तो उनके प्रभाव ऐसे होता है। ऐसे नहीं कि कोई गरीब है, दुर्बल नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल प्रभावशाली होते हुए भी कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि भगवान के भक्त है, इतने सहनशील नम्र। तो बोले छोड़ो सुबर, तू जाने दो यार, मैं नहीं आऊंगा, ठीक, ओके, डोंट। गौड़ जी बोल के चले गए यहां से। गौड़ जी तो सहनशील चले गए, कुछ कहे नहीं, लेकिन सोहरी आपने रंगो देखा, हटा दिया, और नहीं आएगा। अरे सब मछली लोग मिलकर के फेस्टिवल किए, सोहरी जी की जय हो, नेता हमारा। लेकिन हुआ क्या, गरुड़ जी के चरण में सोहरी जी का अपराध हो गया। देखिए, एक भगवत भक्तों के चरण में अपराध हो जाता है तो उसका कितना बड़ा खतरनाक रिएक्शन होता है। सोहरी जी बड़े प्रसन्न हुए, गरुड़ जी को भगा दिया, और नहीं आएगा। मछली भी बहुत खुश हुए, बहुत फेस्टिवल किए, वो किए। तो हुआ क्या, कुछ ही दिन के बाद वही मछली लोग मजे से फेस्टिवल कर करके आपस में जब मिलने लगे, उनके मछली और मछलियों के संग को देख करके उनके अंदर के अद्भुत काम जागृत हुआ। सोहरी के पानी के अंदर, जो कोई डिस्टर्बेंस न हो करके पानी के अंदर छिप करके जप कर रहे थे, पानी के अंदर इतने अद्भुत काम विकार हुआ जिसको सहन नहीं कर पाए। मछली की तो शादी कर ही नहीं सकते, इतने प्रबल काम वेग हुआ, और पानी से उठ करके दौड़े गीला कपड़ा में मथुरा। मथुरा के राजा थे, उनके पास पहुंच करके उनको बोले, मैं शादी करना चाहता हूं। अरे अभी कपड़ा भी नहीं बदले है, शादी करना चाहते, सेविंग भी नहीं किए, दाढ़ी फड़ी, कौन पसंद करेगा तुझे। बोले आपके कुमारियां, ओ राजा के 50 राजकुमारी थे, 50 बेटियां थे। बोले मुझे शादी करना है, कह दो हमको, शादी करा दो हमसे। वो राजा भी बोले क्या करूं, खतरनाक आगे पहुंच गया, शादी करना चाहता है हमारे बेटी से, अब मैं मना करूं तो मुझे भी साफ दे सकता है, गरुड़ जी की साफ दिया था उसका, तो क्या करूं। राजा बड़े चतुर निकले, बोले कैसे हैंडल करूं सिचुएशन को। बोले देखो, मेरे ऊपर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन मैं तो शादी नहीं करूंगा, शादी करेंगे हमारे बेटी, अब वो पसंद ना करे मैं क्या कर सकता हूं। आप ऐसा कीजिए, मैं आपको गेट पास लिख के देता हूं, आप जाइए रानी महल में, एंट्री पास देता हूं मैंने आपको, हाँ, बिना चार्ज में। आप जाओ वहां, अपने सारे राजकुमार है, 50 से 50 बेटी है, आप मिल लेना उनके क्वार्टर से, अगर कोई आपको पसंद करे तो मेरे तरफ से एनओसी। तो सोहर जी समझ गए, बोले अच्छा, राजा बड़ा चतुर निकला, जानता है मुझे कोई पसंद करेंगे ही नहीं, उनके तरफ से अपना चुप हो गया, आओ बेटी तो पसंद नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता, आपको पसंद नहीं करेंगे, पसंद किए तो मेरे तरफ से कोई कंप्लेन नहीं, अगर पसंद करे तो राजी, कोई बात। तो सोहर जी समझ गए, बोले क्या समझ रखा, तो आपने जो भी भजन साधन किए थे अभी तक पूरे पावर लगा करके एड्रेस चेंज कराए, पेंटिंग किया आपने, आपको यही से ड्रेस पेंट बन करके गए तैयार हो करके, अरे वो 50 को 50 राजकुमारी के अंदर कंपटीशन लग गया, होड़ छिड़ गया, मैं शादी करूंगी, मेरे पास आए थे करूंगी, अंततः 50 शादी करना पड़ा उनको, 50 को 50 हाफ सेंचुरी लगाए। वहीं क्यों ही, आप लोग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, एक एक पत्नी में कैसे सुविधा होता है, कितने सुख प्राप्त होता है, अगर 10-5 हो जाए, अगर 50 हो जाए तो अब बेचारे कहां, अकेले पानी के अंदर छिप करके भजन करने वाले महात्मा अभी 50 के साथ, अब ये हुआ उनके, ये पतन है ना, उत्थान है, हाँ, आपके भाषा यही है, गरुड़ जी के चरण में उनके बात करने में वही हुआ, उनका तो ये हाल हुआ, बुरी हाल। और जिसी के लिए किए थे मछली लोग, जो पार्टी बना रहे थे, फेस्टिवल कर रहे थे, उनका क्या हुआ परिणाम, कालिय को वहां मार पड़ा पंख का, कालिय ने सर्च निकाल कर देख लिया कि सोगरी मुनि के साप के कारण ये दिस इज गरुड़ प्रूव एरिया, गरुड़ यहां नहीं जाए। अरे पूरे सपरिवार वही आया, पूरे अपने पार्टी के साथ वही दौड़ कर का आकर वही प्रभु साहब। कालिय का इतने महा विष का प्रभाव था, जिस दिन से कालिय आया मछली का एक भला बचता कोई पूरे समुच्चे कॉलोनी जल के भस्म हो गया, कोई एक भी नहीं बचे। मछलियों के क्या कहा जाए, कोई पेड़ पौधा तक नहीं जिया। पेड़ पौधा भागवत कहता है कि ऊपर में कोई चिड़िया उड़कर जाता है तो वो भी गिर जाता था पानी में, वो विष के उत्कट प्रभाव था, पानी में खोल करके बाष्प होकर धुआं निकल रहा था। आसपास में घास भी नहीं उग सकता है, कोई पेड़ पौधा चिड़िया कोई जीवन कुछ नहीं थे, किलोमीटर किलोमीटर तक इतने भयानक विष का प्रभाव था। तो मछलियों का तो नाम गंध निशान उड़ गया, कोई प्राणी नहीं रहे, केवल पूरे हृदय में कालिय एंड हिज फैमिली, दैट्स इट, पूरे उनके ही हो गया क्वार्टर। पर उनका नाम ही बदल गया, एड्रेस बदल गया, कालिय हृदय अभी तक तो बोलते हैं हमने, हाँ नक्शा वही नाम पड़ गया उसका, कालिय के नाम से रजिस्ट्री उनका नाम से, कागज पत्र में भी हाँ सरकारी कागज में कालिय हृदय लिखा है, कालिय दह, हाँ आज का गवर्नमेंट भी मानता है उसको कालिय के नाम देखता है। अगर कोई यहां से कोई घर बैठे रहते हैं कालिद है कि ये जागा कालिक नाम से सर, तो आपने नाम में जबरदखल करके सबको मार पीट करके बैठ गया और गरुड़ जिताएंगे नहीं, आपने राज करने लगा। और ब्रज के अंदर ऐसे भयानक विषैली सर्प रहे जहां कोई फूल भी ना उग सके, कोई चिड़िया ना जा सके, पशु पक्षी पानी पीने के लिए गए तो जाने से पहले उनके प्रभाव से मर जाते, फिर भी था भगवान। जब केवल अब कम उम्र के थे, अभी अभी प्रमोशन हुआ था उनको, बच्चा पालक से गोपाल बने थे, फिर हाल प्रमोशन हुआ था, तो एक बार ऐसे दिन था जब बलराम जी का जन्म नक्षत्र पूजा था। आजकल हम लोग सब जन्मदिन मनाते हैं डे में, इंग्लिश कैलेंडर के साथ बार्थ डे, और डे में नहीं होता है, तिथि के अनुसार होना चाहिए। तो तिथि नक्षत्र के अनुसार बलराम जी का पड़ा था, ऐसे पड़ा था मतलब बलराम जी अपने आप डाले थे, तिथि नक्षत्र उनके हिसाब से चलता है। क्यों डाले थे, क्योंकि बलराम जी होते हैं आदि शेष, स्वयं सर्पों के ओरिजिन वही हैं। अब कभी कभी भगवान कृष्ण का सांपों के साथ कुछ ड्रामा करने के लिए या मन करता है लीला करने के लिए, तो बलराम जी अपने आप सेल्फ छुट्टी ले लेते हैं, बोले मैं अगर रहूंगा मेरे सामने कोई सांप आ नहीं सकते, शर्म करेंगे, सार के साथ हम कैसे जाएं, हैं? नहीं जाएंगे। तो इसलिए बलराम जी अपने आप छुट्टी कर लेते हैं, जैसे जो अघासुर का वध हुआ था तभी भी छुट्टी लिए थे उन्होंने, तब भी नहीं गए थे बलराम जी, और वो कालिय के सामने हुई जानबूझकर अपना जन्मदिन मना लिए गए नहीं। अब जन्मदिन होगा दाऊ जी के जन्मदिन, वो घर में बड़ा फेस्टिवल, अब रोहिणी देवी जसोदा जी कई सारे ब्राह्मण मुनि ऋषि को बुला करके पूजा करेंगे, पकवान बनाएंगे, फिस्ट होगा, सब होगा, अब घर में सब रहो। लेकिन कन्हैया बोले कि हम तो जाएंगे, क्योंकि गाय सब बोले कि जब तक नहीं हम कैसे हम चरगा जाएंगे, इतने लाके गाय घर में कौन खिलाएगा उनको। तो जितने ग्वाले थे गाय बछड़े सब, भगवान बोले मैं जा रहा हूं, फिस्ट होगा तो दाऊ मैं आकर शाम को ले लूंगा, कोई बात नहीं रख लेना हमारे लिए। तो निकल गए सब, बोले ठीक है। अब दाऊ जाते थे तो माता जसोमती रोहिणी सब बोलते थे कि तू लाला सबसे छोटा है उसको ध्यान रखना, तो आज बलराम भी नहीं जा रहे, तो बाकी जितने लड़के थे सबको बोले देखो दूर नहीं जाना, पास में रहना, इसे करना, इस समय आ जाना, ठीक 2:30 बजे लंच टाइम अनाउंस कर दिया गया, उस बजे तक आ जाना। सब कुछ समझा बुझा कर भेजे बहुत सतर्क से, वहां गए और आए, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, थोड़ा आ जाएंगे। अब बहुत पहले से भी उनको कई सतर्कवाणी दिया गया था लड़कों को, देखना इस तरफ नहीं जाना जमुना जी के इस घाट में, बहुत विषैला सांप रहता है, वहां जाना नहीं, कोई नहीं जाते मर जाएंगे। लड़के लोग को सुने थे कई बार, वो भी जाना जाते नहीं थे, अब तक कोई गए नहीं थे, लेकिन फर्स्ट टाइम आज बलराम नहीं है। और बच्चे लोग बहुत खुश हो गए घर के फेस्टिवल देख करके, आगे आगे गैया पछे पछे ग्वाल, वो आगे छोड़ दिए। गाय देखे कि क्या है कि इतने दिन तक तो चर चर के जहां लाखों गाय चरते हैं तो घास खा जाते हैं, और इस एरिया में कभी नहीं गए थे जमुना जी के उस तरफ, वो सारे घास बचा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है, भले सारे इधर स्टक पड़ा है, हम कहां काम देते, उसी की ओर चल पड़े। अभी काली हद से थोड़ी दूर के था, वहां पर घास बहुत था, इस ओर कभी गाय लेकर कोई गए नहीं थे, वहां चल पड़े तो कुछ लड़के तो बोले अरे इस तरफ जा रहे हैं, दादाजी मना किए थे, पापा मना किए थे, चाचा मना किया था, ये नहीं जाना चाहिए। तो बोले क्या है, पूछो कृष्ण को, पूछो कृष्ण, तो कोई बात नहीं हम है ना चलते, हाँ उनके भरोसे हम चल पड़े, कोई बात नहीं। सब गाय चल पड़े तो उनको घास खाने के लिए, बच्चे भी चल पड़े, कृष्ण को भरोसा दिए कोई चल पड़ो। अब चल के चले, जाके पहुंचे, सचमुच कई दिन से यहां कोई चराने के लिए नहीं गए, तो खूब पेड़ भर के जल्दी से जल्दी घास खाए सब, खा करके गैया को, जैसे जेठ का महीना था, जेठ के महीना में वो तो 12 बजे ही बड़े धूप होता है गर्मी, और पेट भी भर चुका था, अब प्यास लगने लगा, अब कालिया के हृदय जो दिखाई पड़ता था जमुना के धार, दूर ज्यादा नहीं था, कुछ किलोमीटर का आगे दिखाई पड़ता, उसको देखे, अरे नीला नीला जमुना के जल के पास इतने बड़े हृदय है, अब प्यास से मारे दौड़ पड़े सारे गाय, गाय जब चले तो ग्वाले भी चल पड़े, अब पानी पीने के लिए दौड़े, और ये तो पानी तो था नहीं, वो तो था बीस जहर था, अब जाकर पिएंगे क्या, जाते जाते सर चक्कर लगने लगा, पहुंचते पहुंचते किनारे चक्कर आने लगा, अब जब जल स्पर्श मात्र किए तो पी नहीं पाए, धड़ाधड़ से गिर पड़े सब, लाखों संख्या में गाय वहीं पर जमुना किनारे सब मर गए, सब मर गए। अरे क्या हुआ क्या हुआ, ग्वाले सब दौड़े और दौड़ करके गए, वो भी थक गए थे, बोले सर पानी पी ले, बाद में जाकर देखते हैं क्या हो गया उनका, और भी पानी पिएंगे क्या, वो बेचारे तो जा गाय का हाल हो गया, तो बछड़े छोटे छोटे, ग्वाले छोटे छोटे हैं बालक, उनको तो जल स्पर्श भी नहीं कर पाए, पहले से उनका देहांत हो गया, सब गिर पड़े। कृष्ण अकेले थे, उनको तो पता था ही, जाकर देख लिए, बोले सब ये नाट कर लिया उन्होंने, आप देख करके उन्होंने समझ गए, बोले चलो ठीक है, आप जब इतना केस हो गया, मुझे कुछ करना है तो ऐसे देखें, ओके। तो क्या हो कि भगवान सबके ऊपर दृष्टि डाले, जितने मरे हुए गाय थे, जितने मरे हुए बच्चे थे, एक दृष्टि सबके ऊपर डाल दिए, भगवान की दृष्टि में अमृत है, तुरंत दृष्टि पड़ते ही सब जग गए, सब जागृत हो गए, जिसे अभी पता ही नहीं चला किसी को सोए थे, आंख खोलकर खड़े हुए, और खड़े हुए दूसरा विष के प्रभाव नहीं, क्योंकि भगवान दृष्टि केवल गाय बछड़े नहीं, वो हृदय के ऊपर ही पड़ा, पानी भी पूरे 8 किलोमीटर 8 माइल व्यापी पानी भी भगवान की दृष्टि से विषहीन हो गया। अब देखिए भगवान वही है, भगवान हमारा आंख में तो 20 भरा पड़ा, हम देखने से कुछ किसका नहीं होता, गुस्सा चढ़ जाता है, और किसको आप किसको देखेंगे, बोलेगा हुई सिंह भाई सिंह में क्यों मुझे देख रहा, कंप्लेन कर देते हैं कि मुझे देख रहा, अगर कंप्लेन करते बताओ किस कर देते हैं कि मुझे देख रहा है, क्योंकि कुछ होता नहीं, गुस्सा ही होता है, लेकिन भगवान किसको देख ले तो जन्म जन्म का पाप और कितने बड़े जहर 20 साल बदल करके अमृत ले हो जाता। तो इसीलिए भी आज आप एकत्रित वहां हुए हैं, किसी ने किसी प्रकार से भीड़ से 2 दिन 48 घंटा के टाइम के अंदर एक बार उसी ठाकुर जिन्होंने जमुना किनारे लाख लख गाय और बछड़ों को देख करके उनको अमृत तुल्य कर दिया था, उसी ठाकुर के विग्रह के सामने हम जाएंगे, उनके नजर के सामने आएंगे और सभी अमृत तुल्य हो जाएंगे, है ना। हम उनको देखेंगे नहीं, हम उनको देख ही क्या पाएंगे, वो भीड़ में इतने कम समय देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो देखने वाले वो तो देख ही डालेंगे, वो देखते ही रहते हैं। इसलिए कभी कभी आप सोचते हैं कि मैं आया, मेरा टिकट कन्फर्म ही नहीं हुआ था, बैठ करके आना पूरा पूरा रात, मेरा आरएसी था, तो मेरा वेटिंग लिस्ट था, मेरा तो तय भी नहीं था, ऐसे आया बाथरूम के पास में पेपर बिछा के सोकर आया, तो क्या बोलते, बोले मैं सोकर नहीं खड़े होकर आया। ये मत सोचो कि हम आए, कैसे आए, क्यों आए, क्योंकि वो बुलाए, है ना। नहीं जितना आप उनको देखना नहीं चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो आपको, इसीलिए कई प्लान करते करते मेरा तो काल ही प्लान बना, पहले से नहीं था। अरे तेरे प्लान कुछ नहीं चलता, प्लान उन्हीं का चलता है। उन्होंने चाहता है आपको देखने के लिए, इसीलिए किसी ने किसी प्रकार से लेकर के आया। जो जितने कष्ट करके आया उनके इतने तपस्या पूरा हो गया, इतने पाप मिट गया। जो जितने आराम से आया उनके इतने पाप बैलेंस रह गया, है ना नहीं? हाँ, क्योंकि भाई कर्म के दो अकाउंट होता है, जैसे हमारा होता है ना एक डेबिट एंड क्रेडिट, लाभ एंड, तो इसे हम जो भी काम करते हैं उसका दो ही खाता चलता है, एक पाप और पुण्य। कर्म करो तो पाप होगा, नहीं तो पुण्य होगा, दो ही परिणाम होगा। और उस जो हमारे खाता में जमा करते हैं पाप के रूप में पुण्य के रूप में, दोनों जमा होते चला जा रहा है। आप जानते हैं हमारा कौन सा ज्यादा जमा होता है, ये तो सबको पता है। तो जब हम ड्रॉ करते हैं, जमा तो हो गया, पाप का इतने अमाउंट हो गया, बैलेंस इतना है, और पुण्य के बैलेंस इतना है, तो जमा करते हैं। अनेस्ट सब बोलो नहीं, अपने को पूछो हम जो जमा करते हैं, क्योंकि पाप से ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, दुख। पुण्य से ड्रॉ करेंगे तो मिलेगा सुख। तो हम क्या चाहते हैं हमेशा, तो किससे ड्रॉ करेंगे, पुण्य से। हम जितने सुख भोगेंगे पुण्य के बैलेंस घटते जाएगा, थोड़ा और आराम से एसी स्लीपर में पूरा। तो जितने सुख आशा करेंगे पुण्य की, इतने डिग्री बैलेंस घटते जाएगा, घटते जाएगा। और पाप का तो हाथ नहीं लगाते हैं, वो तो बढ़ते जा रहा है। ऐसा मत सोचो कि नहीं मिलेगा, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। ऐसा मत सोचो कि इस यात्रा में नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा। तो इसलिए जेन तेन प्रकारण हम जितने कष्ट सहन कर लें इतने पाप की मात्रा घट जाएगा बैलेंस, और जितने सुख सहन कर लें इतने पुण्य की बैलेंस घट जाएगा और पाप रह जाएगा। तो इसी हिसाब से कम इस ठाकुर के सामने आने के लिए कुछ तो पाप क्षय करके आए, पाप क्षय करके मतलब कष्ट सहन करके, और जो सुख सहन करके आया वो तो पाप में हाथ नहीं लगाया, पुण्य घटा करके आया, है ना नहीं? तो इसलिए आ करके चलो, कैसे भी पाप घटाओ या पुण्य घटाओ, आकर उनके सामने आ जाओ, बराबर कर दो। आए तो सही। तो उन्होंने जमुना के किनारे वहां दृष्टिपात से लख लख जीवों को, पानी को भी विष से मुक्त करके सबको जिला करके, अब बोले कि अब क्या है, और ऐसे जिला है कि फिर प्यास भी नहीं लगा उनको, आपने आप प्यास ही मिट गया। भगवत दृष्टि से केवल नहीं रहा कि बाकी कुछ कमी रह जाए ना, कुछ कमी नहीं रहा, कुछ शारीरिक क्लांति श्रांति भूख प्यास कुछ नहीं लगा उनको। बोले तो अभी खेलेंगे, खेलेंगे क्या, इतनी धूप है, जेठ की दोपहर में कोई छाए तो नहीं। एक ही पेड़ था, 8 माइल लंबा चौड़ा, पूरा हृदय के चारों तरफ किलोमीटर, कोई एक घास की तिनका भी नहीं था, लेकिन एक पेड़ विशाल द्रुम वृक्ष था, वो आज भी है, वो कदम वृक्ष था, उसका बड़ा हिस्ट्री है क्यों था वो, उसको भी इसके प्रभाव का लेकर काम नहीं कर रहा था, वो भी पॉइजन प्रूफ था। तो खड़ा तो इतने बड़े पेड़, उसके नीचे चले गए सब, दूध तक गाय सब जा सो करके अपने जुगाड़ी करने लगे, बच्चे बोले हम खेलेंगे, छोटी सी जगह है, ज्यादा बहुत फैल कर खेल नहीं सकते, बोले गेंद खेलेंगे। एक बालक ने गेंद निकाला, बढ़िया सलाल पिला, तो गेंद फेंकेंगे खेलेंगे। बाकी सब तक खेल के नियम को मानते थे, लेकिन कृष्णा सबसे जूनियर थे, वो नियम नहीं मानते थे, वो उनको भी डिस्काउंट देते थे, बोले चलो हो सबसे क्या है, छोटा लाला है, कुछ गड़बड़ करे, लेकिन वो लिया, उस सीदामा का बारी था, वो हाथ में पड़ गया कृष्ण का, बोला दो मेरा बारी है, मोबाइल नहीं, मैं नहीं दूंगा तुझे, अरे मेरा है, टर्न के अनुसार नियम का, मेरा बारी है, मैं गेंद फेंकूंगा, तू क्यों रखा, मुझे दे दो, मैं नहीं देता, तू क्या करेगा, अब क्या करे, कौन झगड़े। कुछ उनके तरफ हो गए, भाई छोटा लड़का है, जब है छोड़ दो उसको, क्यों छोड़ दे, खेल तो खेली है, वो क्या है, आपस में हो गया विवाद। कुछ उनके सपोर्ट करे, कुछ उनको सपोर्ट करे, खेल के हिसाब से दमक देना चाहिए, अरे छोटे बच्चा है दे दो ना उनको, क्यों दे दे उनको, अब हो गए पार्टी फीलिंग, दो ग्रुप हो गया। दो ग्रुप हो गया तो सीतामा के साथ सीनियर लोग बोले देखो भाई हमने खेल कर रहे हैं, जो हम नियम था उनके अनुसार तो हमको देना चाहिए, क्यों पकड़ के रखा है। और कृष्ण चढ़ गए पेड़ के ऊपर, मैं नहीं देता, कैसे कहां जाएगा तूने, पकड़ता हूं तुझे। अब चढ़ गए, हो तो छोटे से फटाफट तड़ से चले गए, एक बार ऊंचे में चढ़ गए और बाकी लड़के इतने ऊंचे चढ़ नहीं पाए। बोले उतरेगा तो सही, देखता हूं, आओ आप दो थप्पड़ लगाऊंगा तुझे कान पकड़ के, कैसे गेंद लेकर कहां जाएगा, आएगा तो सही ना, मैं तुझे नहीं दूंगा तो कैसे नहीं देगा, आओ तो सही नीचे। भगवान का तो कुछ प्लान अलग था, उनने खेल रचाए थे और ये सब काम कर रहे थे कालिया को भगाने के लिए, जानते थे कि गड़बड़ कर, आज सेना में अमरदृष्टि सबको बचा दिया, काल कोई और आए कुछ है ब्रजवासियों को लेकर तो महाविपद है ये जब तक रहेगा। इस ब्रज के किनारे वृंदावन के धार पर इतने बड़े हृदय ऐसे विशाल विषय होकर रहेगा नहीं, उसका अमृत बनाना है। तो ये प्रोजेक्ट भगवान ने अपने हाथ में लिए, और हाथ में लेंगे तो कालिया को भगाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसके लिए कालिया के साथ फाइट करने के लिए बोले मैं हृदय में उतरूंगा, आज देखा जाए कालिया के साथ अपना होगा, तो पहले से विचार किए थे, इसलिए बलराम जी को साथ नहीं लाए थे। तो उन्होंने एक शाखा जो बिल्कुल पानी के ऊपर जा रहा था तो वहां से चलते चलते चल पड़े उस धार पर। जितने सखे सब थे कृष्ण के, देखे कि वो इधर क्यों जा रहा है। बोले कृष्ण मत जाओ, ठीक है हम छोड़ दिया, हम खेल वजह नहीं होगा, गेंद आपके पास रखो, यहां मत जाओ रे गिर जाएगा, जाओ मत। लेकिन किसी के सुने वो तो चली जा रहे हैं। बिल्कुल ब्रांच नरम पतला है, बोले रे ये मत जाओ टूट जाएगा, गिर जाएगा तूने पानी में गिर जाएगा, चिल्लाते सबका अंदर बोले पिला पड़ गई, सब कैसे जा रहा है, सब डर रहे हैं। लेकिन कृष्ण सुने नहीं, गए और जाकर गेंद को फेंक दिए जमुना जी, लो गेंद मांग रहा था, लो अरे गेंद को फेंक दिया, ठीक है फेंक दिया, हम गेंद नहीं खेलेंगे ऐसे नहीं करके, तू आ जा छोड़ दो। लेकिन कुछ बोले क्यों गेंद को फेंक दिया, हम नहीं छोड़ेंगे। देखो वो कहां पहुंच गया जाकर के। अब जब बिल्कुल वो शाखा के शिखर तक पहुंच गए, तब सारे बच्चे भगवान को देख करके बोले कृष्णा अब मत आगे जाओ, तू गिर ना जाए पानी में, ये पता नहीं हम सुने हैं ये बड़ा सांप रहता है, प्लीज मत जाओ। लेकिन भगवान यहां खड़ा होकर के सबके सामने आपने पटुका को ला करके कमर में बांध दिए, कस के इसे थोपने लगे, बोले आप देखो अब मैं करता हूं क्या, आपके गेंद भी लेकर आऊंगा, अब देखो क्या करता हूं। अरे मत जाओ चिल्लाते हैं तो कूद ही पड़े पानी में, कूद गए पानी में, अरे पानी में गिर गया। सब आश्चर्यवत देख रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा क्या करेगा, पानी में गिर पड़ा, गिरा तो सही, भगवान तो देखने में तो छोटे कद था, 5-6 साल की उम्र का था, लेकिन सारे ब्रह्मांड का लोड तो अपने पेट में ही था। अब जब गिरे पानी में, इतने हेवी वेट करके गिरे, शास्त्र कहता है कि कम से कम 1-2 किलोमीटर तक तरंगायित जल हो गया, फैल गया जल यहां तक, इतने हेवी वेट, जिसको पहाड़ गिर गया पानी में, पानी फैल जाएगा ना सीधे, इतने फैल गया पानी, इतने हेवी करके गिरे वो, उनका घर था वो तो क्वार्टर था कालिया का, दोपहर का समय था, वो तमोगुणी था, सोया था वो, दोपहर दिन में सोते हैं इस तो तमोगुणी लोग, वो दिन में सोया था। बाकी हुआ था क्या गड़बड़, उन्हीं के जो वाइफ्स थे, उनके पत्नियां थे, सब डिबोटी थे, कालिया के पत्नी सब डिबोटी थे, और कालिया बड़ा बदमाश था, वो डिबोटी नहीं था, वो तो बिल्कुल खान पान भी सही नहीं था, बड़ा बदमाश था, कोई नियम पालन नहीं करता था, वो नहीं करता, बड़े गुंडा बदमाश टेररिस्ट था वो सरदार, और पता नहीं उनका शादी कैसे डिवोटी से हो गया था, सारे को सारे वाइफ से, एक दोनों नहीं थे, कई उनके पत्नी थे, सब डिवोटी थे, और वो तो आपने पूजा करे, आपने अलग खाना पकाए, उनके लिए अलग बनाना पड़ा, उनके लिए अलग, बड़े दिक्कत होता था उनको, परेशान थे, बोलते थे पता नहीं हमारे पति कैसा, थोड़ा हटे हमसे, लेकिन डिवोर्स भी कर नहीं सकते, तभी केस डिवोर्स केस चल नहीं रहा था, तभी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, छोड़ भी नहीं सकते थे, और डरते भी थे, लेकिन मन में सोचते थे यार कभी बदल जाए, डिबोटी हो जाए, भगवान को खूब प्रार्थना करते थे आमने से बना करके। अब देखे कि कृष्ण जब पानी में गिर के जा रहे हैं नीचे, सबसे पहले उनके पत्नियां, तो वो तो दिन में नहीं सोए थे, सब देखे, देख कर बोले अरे इतने सुंदर सलोने लड़का, तू नीचे क्यों जा रहे, अरे अरे मत जा मत जा, इतने सुंदर देखने के तू कहां थे पता नहीं, हमारे पतिदेव अभी सो रहे हैं। अरे वो तो ऐसे ही कब जागे, नहीं तू यहां तक आ गया, जागे होते तो उनके प्रभाव से यही जल के मर जाता, इतने खतरनाक है, तू मत जा मत जा। लेकिन वो थोड़ी सुनने वाले, वो तो जा ही रहे थे उनको जगाने के लिए, वो काहे को ये सुनेंगे। उनके देखते देखते वो भी देखे क्यों जा रहे, इतने सुंदर बालक हमारे पति के बेडरूम में जा रहा है। गए, वो सोया था बेडरूम में, उसका ताला नहीं लगा था, खुला था, उनमें तो बड़ा था ना विशाल किलोमीटर। जा करके आप लोग तो कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे, आजकल तो चप्पल पहनते नरम नरम, लकड़ी का चप्पल होता ना खड़ाऊं, उसको पहन कर कोई सांप सोया होगा विषाक्त सांप, उसके पूछ पर थोड़ा चढ़ जाओ, कुचल दो उसको, फिर देखो सांप का क्या होता है टेम्पर, है ना। नहीं कभी कोई टेस्ट तो कोई किए नहीं होंगे, इतने क्रुद्ध होते क्रुद्ध। आओ जाकर के भगवान ने सोया हुआ कालिया महासर्प के पूछ पर, सबसे पतला नरम पूछ पर जाकर के पैर से कुचल दिए उसको। कालिया ने बिलबिला कर क्रुद्ध होकर के उठा, उठने तो वो भागाए, छोटे बच्चे थे तुरंत ऊपर उठे, उठकर आगे कालिया ने गुस्सा में चित्कार करके उठे, देखा वो विश्वास कर रहा था कौन आ गया, मत हस्ती इतने बड़े पदाघात कौन किया मेरे पच पर, कई हैवी वेट जैसे गिरा। तो देखा तो उठ करके पूरे पानी को फैला कर ऊपर देखा, तो छोटा सा बालक जा रहा है ऊपर, विश्वास नहीं, बोलो इस देश छोटा सा बालक है, तो मिसी मेरे सामने कोई बराबरी के नहीं, कुछ भी नहीं है, ये कैसे आ गया, बदमाश आके गिरा तो अब तक मरा कैसे नहीं है, जो पानी के ऊपर से जाते हैं मर जाते हैं, पानी के घुस करके अभी मजा से तैर रहा है। तो देखने से तो सुंदर सलोने बालक, उनको डाउट लगा कि मरा क्यों नहीं है, और उसको मैं क्या करूं, लेकिन देखा कि अभी मर भी नहीं रहा है, वही आके मुझे सचमुच कुचला दिया क्या, विश्वास भी नहीं हो रहा था। लेकिन जो भी हो, सर्प जो होते हैं स्वभाव से बड़े क्रूर होते हैं, क्रोधी होते हैं, और क्रोध के कारण उस श्याम सुंदर भगवान के बिल्कुल बख्य स्थल पर कठोर आघात के चोट मारा, मारा काट दिया जाकर। अरे जिन भगवान को उनको पता नहीं था, जिन भगवान के दृष्टि से पूरा हृदय ही विषमुक्त हो गया, लाखों लाखों जीव जंतु विष कहां गया पता नहीं चला उनका, तेरे विष तुझे काम करेगा, ये तो पॉइजन प्रूफ है, अब विष तो उनसे निकल रहा है, उनको विष क्या करेगा उनको पता नहीं था। अब देखा कि पहली बार एक चोट मारा वो हंस रहे, कुछ नहीं आया उनका, दूसरी बार मार छूटना, तो आपको कभी कभी महसूस होगा, हाँ गुस्सा तो सब कर किए होंगे अब तक, आज तक भी करते रहते होंगे एवरी डे कई बार, तो गुस्सा करेंगे किसके साथ, गुस्सा में थोड़ा गाली गुलज भी कर देते होंगे, जिसको गुस्सा करके गाली देते होंगे वो सामने वाला थोड़ा हंस देगा, तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा ना बढ़ जाएगा, तुरंत बढ़ेगा ना, शूटअप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डोज काम नहीं कर रहा, ये लो डोज है, थोड़ा हाई डोज चाहिए उनके लिए, गुस्सा करके और बोलेंगे तो फिर हंस देगा, बोला अरे ये भी काम नहीं कर रहा तो क्रोध तो बढ़ते जाओ, देखा कि उन्हें डस रहा है वो हंस रहा है अब उनके गुस्सा जितना सीमा तक पहुंचना था पहुंच गया, बोला ये कुछ चोट मारने से दांत लगाने से विष डालने से कुछ काम नहीं करता, चलो विष डालूंगा उसको, इतने क्रोधित हो गया, आपने सर सांप होता ना गुस्से में अपना लेपट में ले, कुंडली में भोग में ले लेता है, तो पूरा कैल में ले लिया भगवान को, आपाद मस्तक पैर से लेकर मस्तक तक बिल्कुल एक एक इंच कहीं खाली नहीं रहा, कस करके उनको सांप अपने कुंडली में ले लिया, तो महासर्प था, लेकर के इतने जोर से टाइट करके कसा, वो सोच रहा था कि अगर अर्थोपेडिक के सर्जन बाई चांस बाद में आए तो उनको निशान नहीं मिलेगा हड्डी उनके अंदर था या नहीं, पाउडर कर डालूंगा सारे, कोई सर्जरी में काम करे, इतने कस करके टाइट किया आपने कैल को, वो करके वो बहुत लंबा चौड़ा था, उनके ऊपर में फण उठाकर बिल्कुल पानी के ऊपर भगवान को ऊपर उठाकर ले आया, भगवान को देख रहे हैं सब, जितने गाय थे गोप बालक थे सब देख रहे हैं, सांप के कुंडली के अंदर कालिया ने आपने 101 हेड था उनका, 101 फण के ऊपर ऐसे करके देख रहा था अपने गर्भ से, बिल्कुल कैल के अंदर चिपट करके लिया था, जब इसी स्थिति को गाय ने, बछड़े ने और ग्वाल बाल ने देख लिए, छट 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 करके संभर गए, होश उड़ गया सबका, कृष्णा करके चिल्ला करके सब गिर पड़े। क्या हो गया? बालक लोग तो गिर पड़े, गाय लोग को गिर नहीं पाए, आवाज करना चाहते थे लेकिन नयनम गलदस्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, आंख से केवल इतना गंगा जमुना की तरह आंसू बहने लगा, आवाज नहीं निकल पाया, वाणी रुक गया, चोक हो गया गला, ऐसे जंत्रवत पुतली जैसे खड़े होकर के रो रहे थे गाय बछड़े सब, और बालक तो सब गिर पड़े थे, होश उड़ गया था सबका देख करके। अब यहां जब ये घटना हो गया, काली ने इसे कर दिया, वहां तो अभी पूजा हो चुका था, पिष्ट के परिवेशन होने जा रहा था, कहां पे? नंद भवन में, नंद भवन में स्वर्ण नक्षत्र पूजा हो चुका था दाऊ जी का, अभी प्रसाद वितरण का, अभी प्रसाद होने चले वाला था। अब प्रसाद होने से पहले नाना प्रकार के अपशकुन दिखाई पड़ने लगा, नाना प्रकार का अपशकुन, अपशकुन जानते ना क्या होता, विभिन्न प्रकार का अपशकुन देख करके सारे ब्रज की माताएं, ब्रजवासी गोप सब ने, क्या हो रहा है? क्योंकि ब्रज के जीवन प्राण तो एकमात्र कृष्ण है, बोले हो ना हो कृष्ण कुछ विपद नहीं आया, आज वो अकेला गया है, दाऊ भी साथ में नहीं गए हैं, अकेला गए आज ने कुछ गड़बड़ नहीं हुआ क्या? ऐसे सभी का मन में इस सोच आया, सोच किया आया, बाहर देखो अंदर देखो जहां देखो जितनी स्त्रियां थी सबके राइट दक्षिण आंख, दक्षिण कान, दक्षिण भाव से फिड़कने लगा, जानते ना आंख फिड़कना, अगर लेडीज का दाएं साइड फिड़के तो घोर अपशब्द अमंगल है, और पुरुषों का लेफ्ट साइड फिड़के तो उनका अपोजिट होने से शुभ होगा या अशुभ, सब ऐसी फिड़कने लगा, बोले क्या ये सब क्यों हो रहा है, मेरा सबसे बड़ा विपद क्या है? न कृष्ण के विपद होने से मेरे विपद है, सब ने निर्णय कर लिए कृष्ण के लिए कुछ विपद तो है, अब खाना क्या खाएंगे, फीस्ट को फीसी ऐसे धरी रह गया, पत्तल ऐसे लगे रह गया, जो पत्तल में बैठे थे वो उठ खड़ा हुए, जो बकेट लेके परिवेशन कर रहे थे को दो दो चम्मच दिए थे वो भी छोड़ बैठे, सब दौड़ के बाहर आ गए। बाहर आकर के अब कहां जाना था, पता थोड़ी है कृष्ण कहां गए, आज गाय लेकर को बताकर थोड़ी गए थे, ना फोन है फोन करके पता कर लूं, कुछ था नहीं, तो अब कैसे जानेंगे कि गए? तो उनके जानने का एक उपाय था, क्या? भगवान के पद चिन्ह उभर करके स्टाम्प लगा हुआ था सब जागा में, स्टाम्प लगा हुआ था, अरे लाखों गाय लाखों बच्चे उसके बीच में उनके पैर के चिन्ह मिट नहीं जाएगा, भूल पड़ गए, मिट नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह ध्वज वज्र अंकुश चिन्ह से बिल्कुल अलंकृत है, उसको देख करके कोई पशु भी कोई पक्षी भी बालक कोई भी भगवान के पद देख करके साइड होकर जाते थे, बचा करके चलते थे, कोई उनके ऊपर स्टेप नहीं करता था, और साक्षात धरती देवी वो तो मानते थे मेरे लिए वो तो महा अलंकार है, मैं उनको कैसे मिटने दूंगी, तो वो भी बचा कर रखती थी, तो इसलिए भगवान के पद चिन्ह को देखते देखते सारे ब्रजवासी गोप गोपियां यही रास्ता में गए हैं, यही तो भगवान के आज के स्टाम्प है, दौड़े दौड़ते थोड़े दूर देखे बोले अरे ये तो काली हृदय की तरफ गया है, अरे गड़बड़, तब तो गया होगा, वहीं से अब लगा कि रोना शुरू कर दिए, हाय हाय हो ना हो काली हृदय में तो निकल नहीं गए, हो ना हो क्या, तो गए तो हैं वही, अब गए सुनसान, क्योंकि सारे मरे पड़े, गाय लोग तो पुतली बन चुके हैं, ग्वाले तो सब हो छोड़ चुके, अब इतने कोई पेड़ पौधा नहीं है, जेठ के महीना के दोपहर के धूप में पागली नहीं होकर रो रो करके सारे गोपियां गोप सब दौड़े सखा सखी, दौड़ते दौड़ते जाकर के देखे देखे तो ये सारे बिछे हुए हैं, और हद के अंदर महासर्प के कुंडली के अंदर भगवान जैसे मूर्छित अवस्था में यही से लिपट पड़े हैं, नाग तो यही से अपने फण उठाकर गर्भ में एंट करके खड़ा है, अरे उसको देखते ही और क्या था, कईयों का तो देखते ही तुरंत वहीं से सेंसलेस हो गए, बाकी रोहिणी और जसोदा आदि जो वृद्ध गोपी जो मातृस्थल के थे वो तो इतने जोर से चिल्लाने लगे स्नेहवत्सल शब्द के द्वारा, बोले कि बस हो गया, हम तो हृदय में घुस जाएंगे मर जाएंगे, कृष्ण की अवस्था में सब जमुना में उस हृदय में प्रवेश करने चले, और कितने बड़े बड़े गोप सभी का ही अवस्था था, सब बोले हम सब आज मर जाएंगे, कोई मरने से पीछे नहीं हटे, सब दौड़ कर आत्महत्या करने के लिए दौड़ पड़े, सब विष कुंड में पड़ के मर जाएंगे। तो बलराम जी साथ चले थे, अभी अभी उनको बंधा हुआ था, ये जो मोटू से बचा था ना, फूल फूल लगाए थे, वो दौड़ कर गए थे, क्यों चले चले गए, फिस्ट खाए नहीं कोई, दौड़ कर गए। उनको तो पता था कि अनुज थोड़ा ड्रामा कर रहा है आज तो, लेकिन ये कोई समझ नहीं रहे उनके बात, अरे कोई बात नहीं चलो यार, कोई नहीं नहीं देखो कृष्ण दौड़, भगवान बोले अरे सब ना घुस जा करके, जा करके रोकने लगे वो अनंत महाबली, एक से अनेक हो करके लख लख ब्रजवासियों को सब रोके, किसी को हाथ दे करके, किसी को डांट करके, किसी को देख करके, किसी को बोल करके, सबको रोक दिया, रुको 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 चुप नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन सब जैसे जैसे करके रोक रोक करके रोके, हित तो रुक नहीं रहते, कैसे कैसे मूर्छित होकर ही भाग कर मरना चाहते थे, रोक रोक करके बड़े परिश्रम से भगवान पीछे मुड़े, बोले कृष्ण तुझे अभी तक मन नहीं भरा, हमेशा सांप के ऊपर सोता है तेरा बेड तो सांप ही है, कभी पलंग में तो सोया नहीं तूने, है ना, नहीं विष्णु के रूम से गर्भ सागर में हो, चाहे खीरे सागर में हो, चाहे कारण सागर में हो, तू कभी बेड में तो सोया ही नहीं, सांप ही पर सोता है, इतने जुग जुग तक सो करे मन नहीं भरा, ये छोटा सा सांप को फिर सोने लगा करके, ये है क्या काली है तेरे सामने, इतने महान आग इनके ऊपर सो सो करके दिल नहीं भरा, आके फिर उसके ऊपर सोने लगा उसके क्या कर रहा है, देखो तेरे सब गांव वाले तेरे सब परिवार के लोग उसे मूर्छित हो रहे हैं, छोड़ो खेल खत्म करो। कई आचार्य कहते हैं बलराम इसलिए हंस हंस करके अनुज को डांटने लगे, बोले देखो तुझे अगर सांप के साथ खेल करना था, बड़ी बड़ी सांप से, तो मैं ही तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं, तो मेरे साथ खेल लेता, ये उन थर्ड क्लास फोर्थ क्लास काहे को टाइम बिगाड़ता है उन लोगों के सामने, पा मेरे साथ खेल, अब भगवान दाऊ के साथ क्या खेले, बोले ये तुच्छ सांप के साथ ये तेरा क्या करेगा लेकिन जो भी हो, जब आपने माता पिता बारे सारे संबंधी आकृष्ट हुए, भगवान डांट ले, बोले देखो उन लोग का हाल, उठो उठो उसे छोड़ो उसको, तो उसका डांट देख करके अब भगवान बोले चलो अब निकलना होगा भाई साहब भी डांट रहे हैं तो भगवान ने तो बोले ठीक है, अपने शरीर को थोड़ा सांस लेकर फुलाने लगे, फुलाने लगे तो कालिय को लगा कि मेरा सारे शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, इतने हेवी एक्सपांड हो रहा है और मेरा कैल सब टूट जाएगा, तो तुरंत उन्हें ढीला कर दिया, शरीर को ढीला करके सांप तो फिसलने वाला, तुरंत फिस करके छोड़ दिया उनको, छोड़ के ऊपर आ गया उठकर पानी के ऊपर, भगवान ने तुरंत फिसल गए, फिसल सकते वो भी तैरने लगे पानी में, तैरने लगे, वो बोलेगा चलो और तो कोई नहीं कर पा, तो एक ही फिर रह गया, वन मोर ऑप्शन हुई, चोट मारूं, फिर चोट मारने के लिए बड़ा विशाल था ना, 101 हेड था उसका, मोड़ करके चोट मारूं, लेकिन भगवान ने छोटे बालक थे इतने एक्सपर्ट स्विमर थे, इधर से स्विम करते थे, फिर मोड़ करके राइट साइड लेने, तो लेफ्ट साइड चले जाते थे, लेफ्ट होने तो इधर उधर होने लो, उनको परेशान कर दिए, वो ढूंढ करके देख करके चोट मारे तो मार ही नहीं सकता, बेचारा परेशान होगा, वैसे करते करते उनको आगे पीछे ऊपर नीचे करते करते जंप करके चढ़ गए उसके सर के ऊपर, उसी को पकड़ करके उनको वो बेचारा को चांस नहीं दिए उनको काटने के लिए, चढ़ गए हेड के ऊपर, और हेड के ऊपर चढ़ गए, चढ़ के जाकर सबके नाम पुकारे, अरे क्यों सोए, सब उठो, अब सारे गोप बालक जग गए, भगवान की बोली में भी अमृत है, उनके दृष्टि में अमृत है, सब जितने ब्रजवासी थे पूरे समुच्चे ब्रज के लोग, आज कोई एक अपने घर में नहीं है, संपन्न गाय संपूर्ण बछड़े जितने पुरुष स्त्री बाल बच्चे सब आज दर्शनार्थी है, देखने के लिए सो सब आए, बोले जब इतने सब इकट्ठा, कुछ तो कल्चरल प्रोग्राम होना चाहिए, सब इकट्ठा फिर कहां स्टेज मिलेगा, स्टेज भी नहीं बनाई मिलता है, बोले कुछ प्रोग्राम पेश करते हैं, थक गए सब, अब प्रोग्राम क्या पेश करेंगे, क्या बढ़िया सा सीन था, जमुना के विस्तृत जल रद, उसके ऊपर महासर्प के 108 के फन, सर्प फन के ऊपर भगवान बोले यही आज डांस करूंगा, आप पृथ्वी में कोई सुपर से सुपर टॉप से टॉप डांसर को बुला के लाओ, उनको बोलो एक डांस प्रोग्राम करा दो, उन्होंने कितने भी उनको कीमत भरो, डांस करने से प्रोग्राम करने से पहले आके चेक करके स्टेज कैसा है, स्टेज अगर सही नहीं है तो डांस हो ही नहीं सकता, ये जानते ना नहीं, आप में से कोई डांसर होगा तो उनको भी पता होगा, अगर स्टेज उबड़ खाबड़ ऐसे तैसे हो तो हो नहीं सकता, स्टेज पक्का होना चाहिए तब तो डांस होगा, नाचना है ना, केवल स्टेज नहीं, स्टेज के साथ लाइट एंड साउंड म्यूजिक वो भी होना चाहिए, तब तो ध्यान समझ गए ना। लेकिन कोई स्वप्न में भी ऐसा सोच नहीं सकता, ऐसा स्टेज सांप के हुड, एक स्टेज होता जीवित लिविंग महासर्प, इतने भयानक विषैली सांप के फन के ऊपर उसी को स्टेज बनाए। बोले ये स्टेज बढ़िया है, उसके ऊपर नाच पेश करना शुरू की। और सारे बच्चे लोग खड़े होकर देख रहे हैं, भगवान का नृत्य शुरू होने लगा। भगवान जब नृत्य शुरू करने लगे, ऊपर से देवता लोग दौड़े, बोले हमारे जो नागाड़ा ये जो मृदंग सब ये किस काम के है, आज ठाकुर नाच रहे हैं वहां नहीं बजाएंगे, जाकर म्यूजिक शुरू किया। हमारा ये म्यूजिक पार्टी से बेकार बजाता, वो बिल्कुल ताल है कि देवताओं के पार्टी आया कीर्तनिया पार्टी, वो आकर बाजा बजाने लगे। साउंड सिस्टम उनके तरफ से था, सब स्पॉन्सर, वो स्पॉन्सर किए थे, अब आके उनकी तरफ से बाजा बजाने लगे, गान गंधर्व नाचने लगे, गान करने लगे। यहां तक कि भगवान शंकर जो अभी तक अनबिटन रिकॉर्ड था, नटवर, उनका नाम क्या है, नटराज, नाटुआ में जो नाच करने वाले जो राजा थे, वो भी आए देखने के लिए। बोले कौन नाच रहा है, आकर देखे बोले माय गॉड क्या डांस है, हम तो ऐसे डांस, बोले मैं कभी डांस करता हूं सब डिजल्व हो जाता है, सब मर जाते हैं, संसार मिट जाता है, मर मिट जैसे मर जाते हैं, और ये डांस कर सब जग जाते हैं, मरे हुए सब जग जाते हैं, व्हाट ए डांस। वो भी आकर देखने, मैं अभी तक ऐसे डांस नहीं किया था, एक सांप के फंड के ऊपर नाच करता है, अद्भुत नृत्य भगवान ने। आप नृत्य करने लगे, सब देख रहे हैं, लेकिन नृत्य करेंगे भगवान, बोले स्टेज कम से कम लाइटिंग तो ठीक होना चाहिए, म्यूजिक तो ऊपर से देवता लोग पेश कर रहे हैं, लाइट कौन करेगा। लाइट में रंग रंगीली लाइट होना चाहिए ना, लाल पीला नीला। तो इतने जोर से ठोकर मारते थे सांप के सर के ऊपर, तो उनका सर फट जाता था, ब्लीडिंग होता था, ब्लड होता था, उसका सर फूट के ऊपर मणि था, चमकीला वाला हीरे जैसे मणि, मणि में ऊपर ब्लड जाता था। अब पीला लाइट कभी रेड लाइट, हम लोग तो पॉलिथिन लगाकर रेड करते हैं, है ना नहीं? हम लोग कभी कल्चरल प्रोग्राम डांस प्रोग्राम होता है तो इलेक्ट्रिक लाइट के ऊपर लाल पन्नी पीले पन्नी लगाते हैं। बोले थर्ड क्लास से पन्नी लगाकर लाइट क्या करें, सीधा ब्लड एक बार लिविंग लाइट, वहीं से वहीं स्टेज से नीचे से लाइट मारता है, स्टेज हो फन फन के फिट हुआ लाइट बिल्कुल वहीं पर नेचुरली फिट है, उसको कलर कर दिया ब्लड डाल करके, वहीं से लाइट आता है, एक फन ऊपर उठता है उसमें मारे, एक फन दूसरा उठता है उसको मारे, यही से स्टेज भी नाचता है और लाइट भी नाचता है और नाचने वाला भी नाचता है और देखने वाले भी नाचते हैं, नृत्य है नृत्य है। अभी तक ऐसा कोई डांस प्रोग्राम हुआ नहीं जो केवल डांसर नहीं स्टेज भी डांस करे, है ना नहीं? जैसे डांसर भी ताल ले और स्टेज भी ऐसे डांस करे, लाइट भी ऐसे डांस करे और देखने वाले भी डांस करे। ऐसे अद्भुत नृत्य परिवेशन किए, खूब नाचे, पूरा 101 हेड, कोई एक भी बचा नहीं, सब तोड़ फोड़ फाड़ दिए, सब ब्लीडिंग हो रहा था, केवल सर से रक्त नहीं बह रहा था, नाक से मुख से उगलने लगा ब्लड, मर चुका था वो तो, आधा मुमूर्ष हो चुका था। तो उनके डिबूटी पत्नियां सब देखे, अभी बोले बोले सर छोड़ दीजिए, अभी हमारे पति है कम से कम। तो उन्होंने आए प्रार्थना करने के लिए, पति देव के फर से प्रार्थना, पहले तो बोलते थे जाने दो जाओ ठीक है, भगवान जो चढ़े उनको पकड़ करके इधर परेशान करते, पत्नियां सब देख रहे थे, ठीक है आज उनको ठीक मजा मिलेगा, बहुत तंग करके रखा था, हाँ पहचानता नहीं कौन, हाँ मजा मिलेगा, मजा मिलेगा क्या, उनके सामने जब ऐसी दशा हो गया पति का, बोले जो भी हो हमारे हस्बैंड तो है, इतने परेशान नहीं होना चाहिए, अब तो बहुत तंग हो गए, अब ब्लड निकल रहा है, मर ना जाए। तो आकर के खूब अपने घर में जितना सब जलंकार भेंट था सब लेकर के हाथ जोड़ के सारे नाग पत्नियां हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, प्रभु छोड़ दीजिए। हम खूब उनको सुनाते समझाते थे, नहीं समझ रहा था, आप पूरा समझ गया, आप प्लीज छोड़ दीजिए मारी मत। तो पता नहीं आप लोग भी समझते होंगे, कभी कभी बहुत ऐसे केस समाज में होता है जिनके पति तो डिबूटी नहीं होते, पत्नी डिबूटी होते हैं। अगर पत्नी के डिवोटी भी डिवोशन भी सही है तो इसे महान सर्प कालिये जैसे पति के भी बदला करके डिवोटी कर दिए, उनके भक्ति के प्रभाव से, तो उनको नहीं कर सकते, अवश्य कर सकते हैं, उनको इतने धैर्य रख करके प्रयास करना पड़ेगा, भगवान को प्रार्थना करना पड़ेगा, जिसे नाग पत्नियां किए थे। वो काली सुधर गया, उनके प्रार्थना भगवान ने उनके डिवोटियों का नाग पत्नी का प्रार्थना सुन करके जंप कर गए, नीचे आ गए। नीचे आ गए तो कालियो भी बोलने लगा उन प्रार्थना, और बोलते हैं कोई ये लड़के लोग बोले बोले कृष्णा छोड़ दो, मर जाएगा, अभी होगा छोड़ दो, अब बहुत नाच लिया और क्या है। सभी का रिक्वेस्ट सुन करके कृष्णा छोड़ दिए उनको, और कालिया को छोड़ करके भगवान ने आए आकर, कालिया ने देखा कि उनकी पत्नी उन तो खूब बोल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वो भी अब तो समझ गया था, वो दिमाग ठंडा हो चुका था। कोई ऐसे खूनखार क्रूर व्यक्तियों को सुधारने के लिए जहां उपदेश काम नहीं कर रहा है, यहां ठोकर काम कर रहा है। हाँ, तो काम कर गया, वो सुधर गया, सुधर कर हाथ जोड़ के बोलने लगा, बोला प्रभु मेरे भी एक बात सुन लीजिए ना, बोलो ना, मुझे ये सांप जो नहीं से क्यों जन्म दिया, ये गुण मुझे कौन दिया, ये स्वभाव मुझे कौन दिया, बोलिए। भगवान बोला आप ही ना, तो मुझे फिर मेरा क्या दोष है बताइए, मुझे सांप बनाए आपने, ऐसे स्वभाव ऐसे गुण ऐसे आप ही नहीं तो किए, अब मैं मेरे अनुरूप काम किया और मेरे ऊपर गुस्सा होकर मारपीट कर रहे, मैं क्या करूं भाई, आप मालिक है, जो मर्जी सो करो, मैं क्या कर सकता। कालिया के प्रश्न के सामने भगवान निरुत्तर हो गए, जवाब नहीं दे पाए, बोला आप बताइए, आप ही ने सब कराया, मेरे ऊपर इतने गुस्सा होते मारते मुझे, पहले से आप रेगुलेटर मोड़ देते मेरे बुद्धि सुधर जाता, आप नहीं कराए, अब आपकी इच्छा मैं क्या कर सकता हूं, अब तो मार मुड़ चुके मुझे सारे, एक भी सर नहीं बचा, फट फाड़ दिए सब, अब क्या चाहते हैं। अब कालिया इतने नम्र होकर बोल रहा है कि भगवान के मुंह से कोई वाणी नहीं, सही पॉइंट बोल रहा है, भगवान बोले इसे हाथ जोड़ करके फिर मांगने मुझे रिक्वेस्ट करना ले कि मुझे बहुत हो गया, अब रहने दीजिए, मैं अब कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा। भगवान नहीं चाहते थे वहां रहे करके इधर, क्योंकि बीस तो होगा एक सांप, भगवान उसको चांस नहीं दिए बोलने के लिए, खुद नहीं बोले, बोलने के लिए चांस नहीं, बोले कालिया बस 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 गेट आउट फ्रॉम हियर, जाओ यहां से, मैं जाऊं, जाओ जल्दी, आप जाने के बाद इस जाग में तीर्थ बनाऊंगा, यहां लोग आएंगे नहाएंगे जल तर्पण करेंगे, और जो मैं कालिया के ऊपर कैसे नाच कर तुझे भगा दे, ये कथा जो कहेंगे सुनेंगे उनका भी पाप निवृत्त हो जाएगा, तो इसलिए अब जाऊं यहां से। अब कालिया बोल नहीं सकता मैं रहूंगा करके, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तुझे जाना ही पड़ेगा, तीर्थ बनेगा, तू रहने से तीर्थ हो नहीं सकता, यू हैव टू गो, अब पूरा सपरिवार जाना पड़ेगा, पूरा कॉलोनी आउट। अब कालिया ने बोला कि ठीक है, आप तो मार मुर के सरा कर दिया, मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे अब जानते हैं मैं किसी कारण से आया था इधर, मैं मृत्यु भय से भाग करके आया था इधर, मैं जाऊंगा तो मेरे डर है गरुड़ जी को, वो आपके पार्टी के आदमी है, बाप रे बाप, एक बार पंख में मारा था अभी तक मुझे याद है, क्या हैवी करंट है, हाँ 32,000 वोल्ट के करंट भी कम पड़ेगा, इससे तेजी से करंट मारा था पंख में उस दिन मारा था मुझे, तो मैं कैसे जाऊं, वो कोई देख ले तो एक्शन लेगा। बोले वो डर मत, अब मेरे पैर का स्टाम्प तेरे सर के ऊपर लग गया, अब गरुड़ जी देखा तो बोला गवर्नमेंट पेपर है, छोड़ दे उसे, है ना, और जहां पर गवर्नमेंट का स्टाम्प लग जाता है, छोटी सी थर्ड क्लास फटा हुआ पेपर भी क्यों ना हो तो उसको समझ जाए सरकारी कागज है ये, है ना, तो सरकारी कागज देख करके वो गरुड़ जी भी ठप्पा दे, कुछ नहीं करेगा छोड़ देगा, तो इसलिए जाओ, निर्दल कहीं भी जाओ मेरे कुछ नहीं हो। गरुड़ जी के ऊपर मैं चढ़ता हूं, आपके ऊपर भी मैं चढ़ा, आज तू भी मेरे वाहन बन गया, तो इसलिए कुछ नहीं, जाओ आप, तो इसके ऊपर कभी दाई दे। मैं कहता हूं कि जो कालिया ने दो दो बार सारे ब्रजवासियों को ऐसे मुरझा दिया था, मरवा दिया था, कितने पेड़ पौधा तक को, कितने मछली क्या क्या को मार करके सारा कितने उत्पाद कर रहा था, उनको भगवान ने मारे नहीं। अद्भुत कृपा, जिस भगवान के चरण रज को पाने के लिए बड़े बड़े जपी तपी तपोघन कोटि कोटि जन्म प्रयास कर कभी नहीं पा सकते, बिन बुलाए बिन इन्वाइटेड के जबरदस्ती उनके घर में घुस करके सर के ऊपर चरण में धरना, ये कौन से पुण्य के फल है भाई, हम तो छू भी नहीं पाते हैं बड़े बड़े, जबरदस्ती घर में घुस करके जगा करके सर के खड़े होकर नाचना, पैर के स्टांप लगा देना, चरण चिन्ह लगा देना, क्या था उनका मेरिट, कौन सा पुण्य का फल था, किस कारण से उनको इस सौभाग्य मिला, इसके उत्तर सब आपके ऊपर हुए, आप मुझे बताएंगे दो दिन के बाद में। कालिए का क्या सौभाग्य था, जो भी हो उनको कृपा करके छोड़ दिए, अभी भी कालिए है, बोलते हैं फिजी में है जाकर के, तो कालिए को भगवान माफ करके छोड़ दिए। और एक दूसरा केस, टाइम है ना नहीं? तो दूसरा केस था इंद्र का, वो भी टारगेट कृष्ण को नहीं किया था, सारे ब्रजमंडल को किया था, ये भी ब्रजमंडल के हित अहित करना चाहता, ब्रजमंडल का हित करना चाहता था, तो इसलिए ब्रजजन पालक कृष्ण ने इंद्र को भी माफ कर दिए, मारे नहीं, बाकी को मारने में तो कईयों को मारे हैं, उनको मारने में क्या, लेकिन मारे नहीं उनको तारे। इतने बड़े जघन्य अपराध किया था उन्होंने, सभी को मारने के लिए प्लान किया था, मारना और मारने के लिए प्रयास करना सेम, कोई आयन कानून वाले होंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर ऑल्सो मर्डर केस है ना नहीं? हाँ, इंद्र ने जो केस किया था जो अटेम्प्ट टू मर्डर, इंद्र की 307 दफा, उनको 302 ना, कौन सा दफा लगे, 302 उनको भी लगेगा, ये दफा सभी उसको रफा कर देना। तो क्योंकि इंद्र ने समुचे सबको मारना चाह रहा था, लेकिन उनको माफ कर दिए भगवान ने, क्यों, क्योंकि उन्होंने गाय का शरण लिया, एक गाय का शरण लिया उसके लिए इंद्र को माफ कर दिए। खैर और भी कारण था उनका, क्योंकि जितने सारे ब्रजवासी मन में केवल यही विचार करते थे कृष्ण को देख करके, ओहो हो कितने सुंदर कृष्ण है, कृष्ण तो केवल देखने के लायक है, उनको 24 घंटा देखते रहूं, उनको सेवा करते रहूं, उनके श्री मुख सुंदर को देखते रहूं, लेकिन कहां टिकते, सुबह उठते ही नहाए कलवा किए कि नहीं, गाय पीछे बछड़ा के पीछे चल दिए जंगल, और रात को आते ही माता बोलता है कि अरे अरे बहुत घूमकर आया, चलो चलो नाला धुला खेलवा सुला देते, आप कहां देखने मिलता है। सब बड़े चिंतित थे, कोई उपाय से उनको ढंग से देख ही नहीं पाते थे, मन भर के भगवान ही चाहते थे सब अपने भक्तों को देखने के लिए, भक्त भी चाहते थे भगवान को देखने के लिए, ये कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था। तो इंद्र ने ये जो कांड किया उसमें अपॉर्चुनिटी मिला, समुचे ब्रजवासी गाय बछड़े सहित आज इकट्ठा हो गए, पूरा वीकेंड तक इंद्र का ऊपर में चला तमाशा, उनके तमाशा अंदर चला, सारे देख रहे थे खुल करके। आप कभी कभी सोचते हैं कभी बारिश के सीजन में खूब पानी बरसता होगा, पूरे गिल्ला हो जाता है, कई ईटा पत्थर पड़ा होगा दो चार महीना से, उसको आप उठाएंगे उसका नीचे कैसा जगह मिलेगा, कीड़े मीड़े होंगे, फिलती जगह होगा, एक रहने के लिए जगह होगा, लेकिन एक बड़े पहाड़, ये इतनी महाबारिश में एक पहाड़ को उठाए, उनका नीचे कोई रहने की जगह होगा, लेकिन भगवान ने पहाड़ को उठा करके सबको बुलाया, बोले आ जाओ इधर सभी रहने। अरे उसके अंदर जैसे गए पहाड़ के नीचे, क्या सुपर हल बना हुआ था, ये हल तो खैर जी गर्मी तो लगी रहा है ठंडी के मौसम में, लेकिन आज तक आधुनिक विज्ञान ने तरक्की करके ज्यादा से ज्यादा एयर कंडीशन बात अनुकूलित किया है, केवल बात वो भी काम नहीं कर रहा है ना, नहीं ऐसी काम करता है सब नहीं कर रहा है। लेकिन भगवान ने जो गिरिराज के नीचे जो हल बनाए थे, एयर कंडीशन तो था ही, बिना इलेक्ट्रिक कनेक्शन में कोई बिल भरना नहीं पड़ता था, मीटर भी नहीं था, भूख भी कंडीशन था, भूख में नहीं लगेगा, भूख लगने की इच्छा हो लगे लेकिन इच्छा हो ही नहीं सकता, इच्छा भी कंडीशन था, प्यास नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगा, कोई टेंशन नहीं लगेगा, कभी परेशानी नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, कभी नींद नहीं होगा, कोई टॉयलेट पिशाब बाथरूम नथिंग नथिंग नथिंग, सब कुछ इतने स्पेशल रूम के अंदर जो गया सबका। फिर क्या होगा ना, केवल एक जो इच्छा आपका मन में था वही बढ़ जाएगा, क्या, भगवत दर्शन लालसा, ये बढ़ जाएगा, ये घर के अंदर जाने से भगवत दर्शन लालसा बढ़ जाए, ये गिरिराज की तल का महिमा है। उसके अंदर गए प्रत्येक ब्रजवासी पशु पक्षी पर्यंत भगवान को देखने के उत्साह लालसा सिख तक बढ़ गया, और बाकी तो कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ ही इच्छा नहीं रहा। अब कृष्ण तो अकेले थे, खड़े थे, गिरिराज को उठाकर जो उनके सामने बैठे थे वो बोलते हैं थे, कान्हा तो हमको ही देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, बाकी सब तो पीछे खड़े, पीछे सब आएंगे बाद में, जो पीछे बैठे बोलते हम ही देख रहे हैं उनको, वो तो पीछे वाले हैं, सब अपने समझ में लगता है कि मुझे ही कृष्ण देख रहा है, मैं ही उनको देख रहा हूं, बाकी कोई नहीं देख रहा है। तो इसलिए वहीं पर भगवान प्रमाण कर दिए अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान के मुखारविंद चारों तरफ है, जहां देखो बाएं दाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सबके सब और मुख ही मुख है मुखारविंद। तो आज भी गिरिराज में जाते हैं पुछरी में मुखारविंद, मुख में मुखारविंद, साड़ी मुखारविंद, बाजू में लहट में बाजू, जहां देखो तहां मुखारविंद। अरे कितने मुख है, मुख ही तो है, तभी से दिखा दिए थे उन्होंने, उसका नीचे भी दिखा दिए थे, चारों तरफ बैठ के सब मुख ही दर्शन कर रहे थे, श्रीमुख दर्शन कर रहे, मुख दर्शन कर रहे थे, कितने सुंदर मुख, केवल स्मित हास्य युक्त मुख नहीं, आज संपूर्ण ब्रजवासी को रक्षा करने का मुद्रा ये जो गिरिराज के धारण किए थे, किसने धारण किए थे, इंद्र के वज्र के प्रहार, इंद्र के कोप, उनके जो नाश करने का प्रोजेक्ट, सबसे बिल्कुल मुक्त करके सारे फ्री करके सबको रक्षा करूंगा बचा डूंगा, इस प्रकार से पहाड़ उठा करके सबको बचा डाले। ब्रजजन पालन मुद्रा यही है, सबको पालन रक्षण पोषण करने के लिए ये भाव, ये हाथ जो ये किए हैं इसका उत्तर है, ये जो मुद्रा के परिचय है, जो उसके सामने आए सब प्रोटेक्टेड है, वेल प्रोटेक्टेड गिरिराज ऊपर खड़े हैं, इस मुद्रा के यही परिचय है। इस विग्रह के सामने आने से आपको ऐसे लगना चाहिए मैं गिरिराज के नीचे खड़ा हूं, देख रहा हूं मेरे ठाकुर जी को। तो गिरिराज जी अगर वज्रपात भी करे तो बाल बिना बंका कर सकेगा, गिरिराज जी खड़े हैं ऊपर में, भगवान की अंगुली ऐसे हुआ है, तो ऊपर में छत्र छाया के रूप में गिरिराज हमको सब छत्र छाया करके दे रहे हैं, भगवान तो सामने ही है। तो जब श्री नाथ जी के सामने जाएंगे, हे नाथ आप हमारे सामने हैं, ऊपर में वज्र प्रूफ गिरिराज है, वाटर प्रूफ एंड रेन प्रूफ एंड वज्र प्रूफ और बिजली प्रूफ, जब एवरीथिंग प्रूफ्ड, अम्ब्रेला ऊपर है और सामने आप हैं, कमर में हाथ देकर खड़े हैं, क्या करेगा इंद्र, कोई वज्र वज्र कुछ काम नहीं करेगा, देवताओं के जो दैव दुर्विपाक से मुक्ति और ताप रहता है, दूसरे महाप्राणी महाक्रोधी प्राणी सर्प जैसे आदि भौतिक ताप, बोले सांप कोई मोड़ मार करके कमर में कस के रखे, देख लो वो भी मोड़ करके गया तो सारे सर फोड़ दिया उसका, आधी दैविक ताप से मुक्ति और भगवान के दर्शन से ही आधी आत्मिक ताप से मुक्ति, त्रिताप मुक्त हो जाएंगे इसके दर्शन करके। लेकिन ये दर्शन केवल आंख से नहीं होता, वो दर्शन तो कान से होता है, तब त्रिताप मुक्ति होता है, नहीं तो लोग तो बहुत देखे हैं लेकिन इनको पता ही नहीं कैसे देखना चाहिए, एक सेकंड उनके चले जाए वो आपके ऊपर नजर डाल दे, दैट्स इट, बस ज्यादा कोई क्रिया मुद्रा करना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार के इतने बड़ी विपद से रक्षा करने का जो आतुरता, भगवान के पहाड़ उठा करके मेरे लोगों को मैं बचाऊंगा, कितने तत्पर है अपने प्रजजन पालन के लिए, भक्त वात्सल्य है, किस प्रकार पालन करने के लिए भगवान किस मूड में है, पहाड़ उठा लिए उनको रक्षा करने के लिए, इंद्र की वज्र के प्रहार कुछ नहीं कर पाएगा, इस मूड में मजवासियों को रक्षा करने का पालन करने का जो भाव है, इस मुद्रा भगवान किए हैं अंगुली में इस ऊपर करके, और इस विपद को इतने महादैव दृपक्ष बचाना भगवान को बहुत कष्ट होगा। बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल नहीं, कोई अंगुली भी नहीं, छोटी अंगूठी का खेल, दैट्स इट, इतना ही है। भगवान ये दिखाते तो क्यों डरता है, ये सारे दुर्विपाक सारे विपद पर मेरा बाएं हाथ के लायक नहीं है, छोटे अंगुली के बराबर है, इसलिए ये सीखी है, ये एक भी नहीं तो क्यों डरता है, नहीं ये छोटा सा लाला मेरा क्या करेगा। देखिए आप कभी कभी बोलते हैं, हम तो वृंदावन में ब्रजवास करने लगे, फ्लैट ले लिए 2 BHK, 35 लाख में लेके ब्रजवास हो गया हमारा, सारे बेच कुछ करके यहां से चले गए ब्रजवासी होने के लिए, अब क्यों बोलते हैं 3 BHK लिया मैंने, तो मैं तो कोई स्टूडियो अपार्टमेंट लिया, छोटा ब्रजवासी बनाओ, ब्रजवासी तू बड़ा ब्रजवासी हुआ, हमारे ब्रजवास के हम नाप चुप ऐसे करते हैं, है ना, कौन सा प्रॉपर्टी डीलर से, जितने गोस्वामी लोग सब आए थे ब्रज को, कौन सा प्रॉपर्टी डीलर से कंटेक्ट करके आए थे, है ना, नहीं एक एक रात्रे तरु तरु तले वास, लेकिन यहां भगवान ने जो ब्रजवासियों को रक्षा करने के लिए तत्पर हुए हैं वो ब्रजवासी कैसे हैं, जिनका एक पहचान इस लीला में बताता हूं आपको। सभी को पता था क्योंकि उनके पीढ़ियों से इंद्र की पूजा करते थे ब्रजवासी लोग, उनके बाप दादा परदादा नाना परनाना से अमल से इंद्र की पूजा सालाना दिवाली के दूसरे दिन होना था होता था, बड़े उनका अनुवाल फेस्टिवल था, करते थे और उसी साल भी करने वाले थे, सब मीटिंग सब चला था, भगवान ने जाकर के सब गड़बड़ कर दिए, लेकिन तो उनका तरफ से तैयारी था। अब भगवान ने जाकर के पानी फेर दिया, उनके दिमाग फेर दिए, सब जाकर पहाड़ पूजने लगे, इंद्र की पूजा इंद्र को आवाहन किए थे, आवाहन करके बैठा भी देते, झंडा गाड़ देते, लेकिन पूछे भी नहीं चले गए, सब लोग उठा करके। ये जस्ट ऐसा ही केस है, इंद्र को गुस्सा भी इसलिए है, माने जैसे कभी कभी आपके पत्नी हो, हर साल जैसे आप ऑफिस से आते हैं गरम गरम रोटी पका करके खिलाती है, बैठा कर बैठे मैं अभी रोटी लाती हूँ, पहले थाली लगा दी, सब्जी भाजी दो तीन लगा दी, अचार लगा दी, रोटी एक ला के रखे, भी दूसरी रोटी खा ले चुवा ले, हाँ ला रहे हूँ गरम, और ला रहे हैं आप बैठे हैं प्लेट में हाथ लगा करके वो दरवाजा खोल के पीछे से चल दी कोई कहीं, आप बहुत खुशी होंगे ना उसके ऊपर, बढ़िया काम किया बैठा कर चल दी। अब इंद्र को हर साल यज्ञ करके भारी आइटम से फिस्ट खिलाते थे उनको, इस बार भी उनको बुलाए थे, बुलाकर बैठा है, पानी फानी दिला दिए, आसन फासन दिला, बैठो, अरे सर पकवान भी बनाए थे, अरे भगवान के चक्कर मारकर पूछे भी नहीं छोड़ के चले गए बेचारा बैठा है अरे कोई गोकुल टीवी थोड़ा दे देते तो उनको बाकी कुछ नहीं दिया तो ये तो कम से कम दे ये भी नहीं पूछे उनको गुस्सा होना था होगा ना, ये क्या कर दिया यार। तो लेकिन भगवान इंद्र को क्यों ऐसा किया हर साल, क्योंकि भगवान ने आगे चल करके गीता बोलना था, भगवान गीता में बोलेंगे कि देव पूजा अविधि है, देवताओं की पूजा मत करो, ये सब अविधि पूर्वक है, ये ठीक नहीं गलती है सब। कोई पूछेगा सर ऑब्जेक्शन, क्या आपके बाप आपके परिवार गांव वाले सारे देवताओं की पूजा करते हैं, देवता के राजा इंद्र की पूजा हर साल करते हैं, हम क्यों मना करते हैं अपने। तो भगवान ने बोले चैरिटी स्टार्ट एट होम, सबसे पहले मैं तो अपने घर से बंद करा, घर वाले ही खुद पूजा करते, मैं आगे चल कर दुनिया में क्या कहूं, दूसरे को कहने से पहले मैं तो कल करके दिखाऊं, अपने आचरी धर्म पर बोले आचरण, मैंने तू इसलिए उन्होंने सबको बोल दी कि ये पूजा पूजा बंद। अब इंद्र बोले तेरे इतने घमंड है तो मेरे घर में आकर के पूजा लेना चाहता है, तुझे मैंने अपॉइंट किया था ये काम करने के लिए, इंद्र का दिमाग खराब जाकर यहीं बैठा था, थोड़े दिन तुझे सम्मान कर दे, इसलिए मतलब ऐसा थोड़ी आशा करना चाहिए, सम्मान की आशा सम्मान की भूख बहुत बड़े खतरनाक डिजीज है। भगवत गीता में भगवान जब ज्ञान की परिभाषा समझाते हैं त्रयोदश अध्याय में 8 से लेकर 12 नंबर श्लोक तक, सबसे पहला जो ज्ञान है क्या है वो शब्द, मान की आशा ना करना, उसके अनुवाद में प्रभुपाद जी क्या लिखें आप पढ़ लीजिए, बड़े सुंदर भाव से लिखें और ठक्कर लेगा सुन पढ़कर सुन करके उसको। तो हमारा जो हमेशा भूख बनी रहती है दूसरे से थोड़ा प्रेज लेने के लिए, सम्मान के भूख हमारा जो रहता है, इतने बड़े खतरनाक डिजीज है, सब मिटिया मेट कर देता है, सारे सद्गुण को तोड़ मरोड़ करके साफ कर देता है, सब मिटा देता है सम्मान के भूख। तो इंद्र को ही पड़ा था, तो इसलिए भगवान ने बोले तुझे भी सिखाता हूं तुझे सिखाता हूं मारूंगा नहीं सुधार कर दूंगा तुझे, तो इसलिए उनको प्लान किए थे। अब सारे ब्रजवासियों को एक एक तक पता था कि जब उन्होंने उनको पूजा नहीं किए गोवर्धन पूजा कर डाले और गुस्सा इंद्र को हुआ, उन्होंने एक्शन लिया कि ये जो भयंकर बारिश ये जो वज्रपात है साइक्लोन ओलापात ये सब किसका काम है, इंद्र का। वो जानते थे सीनियर अफसर है, उनको इंसल्ट कर दिए, उन्हें गुस्सा में कर रहा है। तो अगर हमारा साथ कभी ऐसा घटना हो जाता हम क्या करते बोलिए, क्या करते, इंद्र के पास जाते सर सर प्लीज एक्सक्यूज मी गलती हो गया, उनके चक्कर में आकर फंस गया और कभी नहीं करूं, गान पढ़ सीधा लग मांगते हाँ सर मैं थोड़ी करना चाहता, तो उन्होंने आकर मुझे बहका दिया, सर माफ कर दीजिए और नहीं करूं, करते जरूर, क्योंकि पता था वही नहीं कर रहा है, उसके साथ हम थोड़ा गड़बड़ी किए, उनने घुसा होकर इसे कर रहा है। कोई भी ब्रजवासी इसी बात को जान करके सुन करके समझ करके भी इंद्र के पास ना फोन किए, ना गए, ना पूछे उनको, ना लब कोई नहीं गए। और गए किसके पास? 6 साल के लड़का, कपड़ा तक ढंग से नहीं पहन रहा, उसके पास दौड़े, कृष्णा कृष्णा पाही मांग बचाओ। ये है ब्रजवासियों की पहचान, ये है लक्षण। कितने भी भारी से भारी विपदा आ जाए, जानते हैं विपद इसी ने किया है, यही कारण है, यही शोर से किसी के पास ना जाकर के केवल कृष्ण के पास जाना, चाहे कैसे भी बाल स्वरूप कैसा हो, कैसे भी स्वरूप हो, कृष्ण ही का शरणम, एकमात्र कृष्ण ही हमारा शरण है, इस बात जिनका मन में तन में बुद्धि में बैठा हुआ है वही ब्रजवासी। केवल फ्लैट खरीदने के बैठने से ब्रजवासी नहीं हो जाता है ना, ये था उनके पास, किसी के पास ना जाकर के छोटे से लाला कृष्ण के पास दौड़े, कितने विश्वास था उनके ऊपर, कितने भरोसा था उनके ऊपर, भरोसा करने के योग्य भी स्वरूप भी नहीं था उनका, वो भी दौड़ पड़े, या मैं क्या कर सकता हूं, चलो गिरिराज बाबा बचाएगा, गिरिराज बाबा बचाएगा, भगवान भी गिरिराज के बहाना लेकर के बचाए, क्योंकि भगवान का प्रोजेक्ट था, मैं सबसे देखूंगा बोले डायरेक्ट बोलूंगा ये सारे गोपियां को मैं देखना चाहता हूं, बोले वो सब कम बोले तो गिरिराज के बचाने के चक्कर में केस कुछ और हो, कुछ प्लान कुछ और है, तो गिरिराज को उठा करके सबको रक्षा करने के बहाना में एक दूसरे को दर्शन के चांस मिला। पूरा 7 दिन 7 रात तक मन भर के खूब, केवल खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, नहाना नहीं, धोना नहीं, नो टॉयलेट नो बाथरूम नथिंग, एक ही काम है, एक दूसरे को देखते रहे। ये जो भगवत दर्शन लालसा, भगवान के भक्त दर्शन लालसा, ये जो क्रिया, ये काम अगर इंद्र इसे बदमाशी ना करता नहीं होता, इसीलिए भगवान के अंगणी काम इंद्र तो ओके ओके नो प्रॉब्लम जो क्या है नॉट गुड। और इंद्र भी डर के मारे उनको जब देखा कि इतने सारे किया कुछ नहीं हुआ, ब्रह्मा जी के पास दौड़ कर गया था उन्होंने, ब्रह्मा जी ने बोले तेरा भी ना सर मिस्टेक हो गया, ना मिस्टेक तो मेरा भी हुआ था, तेरा क्या मेरा भी हुआ था, मैं चश्मा छोड़ गया था उस दिन जल्दी से था, वो अघासुर को मारे में दौड़कर चला गया था, भूल गया था और नंबर चश्मा, और यहां पहचान नहीं पाया, वो भी मेरा गड़बड़ हो गया था। तू क्या हो गया, तेरा तो शरीर का सारा आंख है, हजारे आंख वाले, तू देख नहीं पाया, मैं तो दो आंख से देख नहीं पाया, दो आंख ने 8 आंख मेरा भी है देख नहीं पाया, तो इसलिए ऐसा मत करो। लेकिन मैं समझ गया हूं ना, क्या वो माफ कर देते हैं ना, क्या वो अभी गोपाल हैं, गोपाल होने के नाते गाय उनके इष्ट हैं, तो गायों के शरण में जाओ तो माफ कर देंगे। इतने बड़े अटम टू मर्डर केस 302, अरे वो भी माफ हो जाएगा, वो भी माफ हो जाएगा केवल गाय के शरण में जाने से। ये भगवान ने सिखाते हैं हम लोग को अपने लीला में, कितने से महापाप भी, 302 नंबर के पाप भी केवल गो माता के शरण में जाने से, गो सेवा के द्वारा ही पूर्ण साफ माफ हो जाएगा, है ना। और इसी लीला से भगवान इस गिरिराज धरण लीला से अपना नाम को अमंडमंड करके गोविंद कर दिए। गाय को इंद्र तो यही है, गाय लोग ने बोले यस हमारा पालक तो ही हमको बचाए, उन्होंने तो खोर इंद्र तो मार रहा था हमको भगवान अपने गोपाल नाम को सार्थक किए उस अभिषेक करके। तो इस प्रकार से इंद्र के कोप से दैव दुर्विपाक आदि भौतिक आदि दैविक आदि सारे प्रकार ताप से बचाने के लिए आपने भक्तवात्सल्य भाव, भक्तों के पालन पोषण रक्षा करने के भाव से तत्पर होकर के भगवान जो तत्पर रूप धारण करते हैं, जो मूर्ति धारण करते हैं, ये मूर्ति है जिनको आप देखना चाहते हैं, उनका पीछे ये रहस्य है। इसी भाव से भगवान को देखना चाहिए, हे प्रभु आप जुग जुग से भक्तों को रक्षा करने के लिए कितने परेशानी उठाते हैं, अभी तक हाथ नीचे नहीं कर रहे, आपको बोला जाए हाथ उठाकर खड़ा रहो, एक हाथ कितने घंटे हाथ उठा रख सकते हैं, ट्रायल किए कभी, कितने समय कर सकते हैं, 5 घंटा 5 मिनट और थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं शायद, कभी कभी ऐसे 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 करके हाँ जाए सब आधा घंटा बहुत ज्यादा है, उसके बाद तो नहीं कर पाए। अब ये लीला कब हुआ था हा? अभी तक भगवान के हाथ नीचे नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि हम जैसे कल्पित तो होते ही रहते हैं, हमारा सिना पाप खत्म हो जाए तब उनका हाथ नीचे आए, तो हम करते जा रहे हो रक्षा करते ही जा रहे हैं, नीचे करेंगे तो बचाएंगे कौन, इसीलिए तो नाथ है इन्हीं के शरण में आना चाहिए, नाथ हम ऐसे है हरे मैं हाथ उठाया हूं आ जाओ अभी भी बचा रहा हूं, अभी भी नाथ हूं शरण देता हूं रक्षा करता हूं पालन करता हूं, इसलिए उनके पास आना चाहिए जो अभी इसी क्षण भी इसी मुद्रा में, इसलिए वह उत्तोलन करके अंगुल्याग्र में शीघ्र राज धारण करके आपने को दिखाते हैं, बोले देखो मैं इसे बचाया बचा रहा हूं बचाते रहूंगा, है ना नहीं? इसलिए कमर में हाथ दे करके विश्वास भी दिलाते हैं और दिखाते भी हैं ऐसी भाव से, तो इसलिए इन स्वरूप के सामने आकर के कुछ बोलना नहीं पड़ता, बाकियों के पास जाकर के कई कांडी ओ, याद करके चीट निकाल करके प्रार्थना पढ़ें प्रयार पढ़ें कुछ करें, यहां कुछ नहीं करना पड़ता, केवल आना ही पड़ता है उनके सामने, दैट्स इट, केवल मात्र उनके सामने हो जाए, बाकी उनके ओर से वो अपने आप तैयार हैं रक्षा करने के लिए, रेडीमेड हाथ उठा करके कमर कस करके खड़े हैं हम लोग को बचाने के लिए, लेकिन कोई बचने वाला भी तो आ जाए ना, कौन बचना चाहता है, बोले नहीं सीट कंफर्मेशन नहीं है मैं नहीं जाऊंगा, बताओ क्या करें, ये तो उनके तरफ से बचाने के लिए द्वार खोल करके, इसलिए नाथ द्वार है इस द्वार में आना चाहिए नाथ के शरण में, लेकिन इस द्वार के आने के लिए थोड़ा परेशानी को हम झेल नहीं सकते, कुछ घंटों का तो है, बाकी अकोमोडेशन प्रसाद भी व्यवस्थित है तब भी नहीं आ पाते, यहां तो इसी भाव से आना चाहिए जैसे ब्रजवासियों को विपद पड़ा था, कोई अकोमोडेशन का व्यवस्था सारे तोड़ताड़ दिया था इंद्र ने, खान पान का व्यवस्था नहीं था, ऊपर से बारिश बिजली बर्फ के स्टोन हेल स्टोन क्या क्या व्यवस्था नहीं किया था, इतने टेंशन कष्ट परेशानी से आए तो भगवान बचाए, हम लोग तो कोई परेशानी नहीं है, एसी टिकट रिजर्व्ड और यहां भी अकोमोडेशन कंफर्म्ड और प्रसाद टाइम भी बिल्कुल टाइम पे मिल जाए रूम डिलीवरी तब भी ना आए, तो कैसे भगवान की जो भक्त वात्सल्य कृपा से कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे, कैसे प्राप्त कर, हम किसी को बोलते हैं कोई बात नहीं थोड़ा एडजस्ट कर लो दो दिन का तो बात, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, मैं एडजस्ट करूंगा मेरे साथ पार्शियलिटी तो करता, अरे यही दो दिन का एडजस्ट नहीं करेगा, 200,000 जन्म लेकर के तू तो एडजस्टमेंट नहीं कर पाया अभी तक, यही दो दिन एडजस्टमेंट से सारे रफा नफा हो जाएगा, उसको नहीं करना चाहता, तो इसलिए आप में सभी का ज्यादा समय नहीं लूंगा, यदि कर्तृपक्ष के आदेश से फिर कभी मुझे सुयोग मिलेगा फिर दूसरा ये कहेंगे, लेकिन मैं इतने से आपको सब प्रार्थना करूंगा, ये जो यात्रा है इसमें केवल गुरु प्रसन्नता नहीं है, इसमें साक्षात भगवत प्रसन्नता है, क्योंकि भगवान के द्वार में आवे श्री नाथ के द्वार है ये, इसी द्वार में आकर के अपने छोटी छोटी तकलीफ टेंशन को भूल जाओ, उनके द्वार में तो केवल दिल खोल करके उनको पुकारो हे नाथ मैं आपका हूं, इसी भाव से रहना चाहिए, उसमें खाना पीना सोने का कोई चिंता ही नहीं रहना चाहिए, पूरी एडजस्टमेंट कर कुछ ना मिले खड़े ही रहो दो दिन, हे नाथ मैं तो आपका हूं, जब आप बचाने वाले हो आप पालने वाले रखने वाले हो मैं कहा को चिंता करता मुझे कूपन नहीं मिला तो इस प्रकार के सारे प्रकार के अड़चन टेंशन से मुक्त होकर के पूरे निर्मुक्त होकर के भगवान के सामने दिल खोल करके जाओ तो फिर देखो आप स्वयं अनुभव करेंगे श्री नाथ जी की कृपा रखण लीला जो आपके शरण धारण का लीला गिरिजा धारण की किसी प्रकार से हम प्राप्त करते हैं तभी दर्शन पूरा होगा तभी ये यात्रा के पूरा होगा। हरे कृष्ण।
शिव।
हरे कृष्णा। तो वैसे जो लोग हैं मूवी देखने के लिए जाते हैं और 2.5 घंटा अंधकार में बैठ करके आते हैं और अपने अंदर अंधकार लेकर के जाते हैं, लेकिन आज हमने एक स्पिरिचुअल मूवी देखी। अब ये शो था 12:30 से लेकर के 3 बजे तक का शो था ये, क्योंकि मुझे उम्मीद है यहां जितने लोगों ने सुना महाराज से कथा एक्चुअली लीला वो देख रहे थे। तो जो हरि नाम है वो तो कृष्ण है और जो हरि कथा है वो श्रीमती राधा रानी है और भगवान कैसे शुद्ध भक्त जैसे कि वैष्णव महाराज श्रीमती राधा रानी के प्रतिनिधि हैं। तो ऐसे प्रतिनिधियों से हमें वास्तव में सुनना चाहिए अगर हम भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न करना चाहते हैं, यही तरीका है और कोई टॉनिक नहीं है, कोई दवा नहीं है, यही है सब कुछ। ये जो कृष्ण भक्ति का जो कृष्ण कथा का जो रसायन है जो कि मुंह से नहीं नाक से नहीं कानों से लिया जाता है इस कान में आकर के, यही एकमात्र तरीका है कृष्ण के प्रति प्रीति विकसित करने का। तो अभी अगर किसी को कोई सवाल हो तो सवाल पूछ सकते हैं। यस प्रभु माइकल लाल।
हरे कृष्णा। भगवान को सर्प और गरुड़ दोनों बहुत पसंद है और गरुड़ जो है वो वाहने और सर्प पे योग निद्रा में रहते हैं, तो दोनों में जो संबंध है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे।
गरुड़ और सर्प का संबंध सबको पता ही है, लेकिन भगवान ही ये कहे कि दोनों को मिला सकते हैं, हम नहीं मिला सकते
दोनों, तो
इसलिए भगवान है ना, इसे पूरे अपोजिट डायरेक्शन को ये पॉजिटिव करने वाले हैं, है ना, इसलिए भगवान ये दिखाते। ओके
हरे कृष्णा महाराज। थैंक यू महाराज। एक मैं ये पूछना था, जैसे अभी आपने ये बताया जैसे इंद्र जी को क्षमा कर दिया भगवान ने कि भगवान ने जो है भक्तों को मतलब अपना दर्शन दिया 7 days and night, तो जो वो था कालिया उसको क्यों सेव करा, उसको क्यों बचाया, तो उसके पीछे मतलब क्या?
ये प्रश्न तो मैंने आपको पर दिया था, आप मुझे पूछा, 2 दिन का टाइम आपको दिया मैंने इसके लिए। आप नहीं बता पाएंगे तो मैं बता दूंगा तुम्हें।
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मेरा प्रश्न ये था महाराज, 2 प्रश्न थे। एक जैसे आपने आप समझा रहे थे कि कैसे इंद्र ने ब्रजवासियों को मारने की कोशिश की और फिर आपने बताया क्योंकि उन्होंने गाय की शरण ले ली तो भानु उनको माफ कर दिया। बस मेरे मन में आ रहा था महाराज, जैसे एक तरीके से उन्होंने वैष्णव के प्रति हिंसा करने की कोशिश की तो एक वैष्णव अपराध उनको लगा होगा, तो गाय की शरण से वो ब्रजवासियों के अपराध से कैसे बचे, कृपा करके महाराज जी समझाइए।
ऐसे ही बचे जो धीरा करके देखा है, जैसे कैसे भी अपराध क्यों ना हो, वैष्णव अपराध भी कितने खतरनाक हो, गो सेवा और गो शरण से सब मिट सकता है, यही तो इस लीला के दृष्टांत है।
क्योंकि महाराज जिज्ञासा ऐसी उठी, जैसे हम सुनते हैं कि जैसे अगर पैर में कांटा लगता है तो वहीं से कांटा निकालना पड़ता है, जिनके प्रति अपराध होता है उनसे ही क्षमा मांगनी पड़ती है। हाँ,
तो बिल्कुल सही बात आप कहते हैं, यही सही, क्योंकि गाय सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है, सीनियर डिवोटी है, इसलिए अगर जूनियर डिवोटी के चरण में अपराध हो जाए सीनियर डिवोटी की सेवा करने से मिट जाता है, यही सिद्धांत है
ना। और दूसरा प्रश्न था महाराज कि जैसे आप बता रहे थे कि जितने भी ब्रजवासी जब गोवर्धन के नीचे आ गए तो स्वतः ही उनकी वैसे तो उनके अंदर लालसा पहले भी निश्चित रूप से थी ही, लेकिन 7 दिन जो है वो भगवत दर्शन की लालसा और प्रगाढ़ हो गई, तो 7 दिन सिर्फ दर्शन करते रहे, न खाया न पिया। तो हम यही दर्शन करने भगवान के दर्शन करने की लालसा को और कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने अंदर देखा है कि दर्शन करने की लालसा नहीं होती, तो उसको और कैसे प्रगाढ़ कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा
yes! उसको बढ़ाने के लालसा है गिरिराज के चरण लीला, इसे यात्रा में आना पड़ेगा, है ना, इसे यात्रा में आएंगे तब दर्शन लाला से बढ़ेगा।
एनी माता जीज ओके, माताओं के सवाल अक्सर नहीं होते मानो खुद है। ओके माता जी
हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर लेक्चर दिया। महाराज ये प्रश्न मेरे बेटे की तरफ से है, उसने मुझे एक बार पूछा था, मैं उसका आंसर नहीं कर पाई थी और किसी और ने भी पूछा था, तो उसमें उनका प्रश्न ये है कि जो गरुण है वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो शुद्ध भक्त तो कभी भी भगवान को ऑफर किए बिना खाते नहीं हैं, तो वो कैसे सीधा खा लेते हैं और उनको कोई पाप नहीं लगता है, वो चार नियम जो हैं वो उनका कैसे नहीं टूटता है वो?
अगर आप गरुड़ जैसे शुद्ध भक्त हो जाएंगे तो आपको भी ये रूल एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। हम लोग सब नौसिखिया है ना, हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है।
थैंक यू मैम।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस
हरे कृष्ण महाराज जी। लेकिन जब भी कोई शुद्ध भक्त बनता है तो फिर उसके दिल में करुणा आती है, तो फिर
क्या 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 शुद्ध भक्त
उसके दिल में करुणा आती है और मर्सी आती है,
क्या मर्सी?
तो फिर वो तो मार के खाते हैं, तो फिर ये कहा कि करुणा हुई।
अरे भाई करुणा है नहीं, कैसे पता चला उनको? आप शुद्ध भक्त क्या फास्टिंग करके रहते हैं क्या? है ना? नहीं, वो तो अपना खाना खा रहे थे, वो तो मर्सी कर ही रहे थे। जैसे हम पोटैटो फिंगर चिप्स खाते हैं एकादशी के दिन भी, तो पता है ना नहीं पोटैटो के अंदर भी तो कुछ लिविंग सेल भी तो है, तो उसको बड़े मजा से खाते हैं एकादशी के दिन भी, तो वो तो पोटैटो चिप्स नहीं खाएंगे, तो अपना खाते थे। जीव जीवस्य भोजनम, यही भगवान का नियम है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है ना, एक जीव दूसरा जीव के खाएगा, ये व्यवस्था प्रकृति का नियम है।
महाराज एक प्रश्न और था, ऐसे आपने बताया इतने मतलब इतने से मतलब भगवान दयालु हैं, मतलब इतना जैसे इंद्र ने भी इतना उत्पात मचाया और कालिया ने भी इतना वो करा, तो भगवान ने फिर भी उनको माफ कर दिया, तो ऐसे ही ऐसे हम कई बार अभी मेरे को लग रहा था कि ऐसे हम भी ऐसे कोई अपराध कर दें कुछ कर दें, तो हमें भी ये रहना चाहिए कि ठीक है भगवान माफ कर देंगे, तो हम
देखिए मैं आपको बता, भगवान माफ किए केवल दो केस में, बाकी सबको मारते थे, बाकी किसी माफ नहीं किए, आपने ध्यान देकर नहीं सुने, इसी दो केस से भगवान ने माफ कर किए हैं, इसीलिए दिखाए इस दो लीला में इस माफ केस, बाकी हर केस में साफ किए माफ नहीं किए।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा महाराज जी। मुझे पूछना है कि आपने बताया गौ माता की शरण लेना चाहिए, तो गौ माता की शरण कैसे लेना चाहिए, किस तरीके से लिया जाता है?
इंद्र ने लिया
कैसे, मतलब गौ माता की शरण ले सकते?
आप जब कोई उपाय नहीं, होपलेस है करके, हे ओ माता त्राही मांग पाही मांग बचाओ, आप ही के द्वारा मैं बच पाऊंगा, जीवन भर केवल आपकी सेवा करूंगा, आपके लिए जीऊंगा, इस
तो क्या गौ माता के सामने जाके ऐसा बोलना चाहिए?
बोलना नहीं करना चाहिए, बोल भी सकते हैं वो कर भी सकते हैं, है ना?
हाँ। मतलब सेवा सेवा करके, सेवा करके।
हाँ हाँ, जैसे इंद्र ने सुरभि गाय के पास जाकर के उनको उनको वो गाय की लैंग्वेज समझ सकता था, हम तो समझ नहीं सकते हैं, तो उनसे प्रार्थना किया, उससे खूब डांट पीट खाया, उनको आगे करके उनके पीछे पीछे आया, उनके बात माना, जो वो कहते थे वही करना चाहा, हम तो गायों के बात समझ नहीं सकते, तो कम से कम हमारा प्रयास, भगवान ने जो शक्ति जो बुद्धि जो दिए हैं उनको गौ की सेवा में दिए, ताकि गोवा गौ को उनके नाम देकर के हम अपना पेट ना पोसे, हमारा द्वारा उनको पोषण करे, ये सही भाव होना चाहिए, है ना? आजकल गौ सेवा करते हैं गायों के नाम में, हम अपना पोषण करते हैं, यही से गायों का शोषण होता है, ऐसे हम अपने को शोषण करके उनको पोषण करें, इस प्रकार भाव रखना चाहिए, है ना?
हरे कृष्ण प्रभु जी। गरुण भगवान के भक्त थे
जी,
तो वो वेजिटेरियन तो हो सकते थे, खाना खा सकते थे वो, तो उस तरह से क्यों नहीं?
आप नहीं समझ पाए,
जीव 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 का अलग अलग भोजन है।
हाँ,
तो ह्यूमन बॉडी भी कई सारी चीजें खाती है,
तो मैं आपको पूछना हूँ, भिक्षण हो सकते थे तो नॉन भिक्षण हो सकते भी तो है, वो भी तो नॉन भेज भी हो सकते भी तो है,
कौन
भगवान के भक्त जो है शक्तिशाली वो कुछ भी कर सकते हैं,
तो नॉन वेज होना जरूरी है उन्हें,
ये होना कोई जरूरी है क्या?
वेजिटेरियन नहीं तो होंगे तो ज्यादा अच्छा है ना,
वो उनके लिए ज्यादा अच्छे, तब तक देखेंगे कि वो ऐसे भक्त हैं जो नॉनवेज खाकर भी हमसे सीनियर डिवोटी है, तो कैसे पता चलता है।
हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी आपने बताया था कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो अगर उनका कोई अपमान कर देता है या तिरस्कार कर देता है तो वो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। आपने एग्जांपल दिया था कि किस तरह से गरुण देव ने माफ कर दिया था सबरी मुनि को, तो महाराज ये क्वालिटी अपने अंदर कैसे डेवलप करे? मेरे अंदर तो नहीं है कि मैं किसी को अगर कोई अपमान करता है तो फॉरगिवनेस आ जाए। और आपने एक दूसरा बताया था कि जो भक्त होते हैं वो सम्मान की आशा नहीं करते हैं, सम्मान की आशा करना जो है वो सबसे खतरनाक है, तो इन क्वालिटीज को कैसे डेवलप करें अपने अंदर? कि मेरे साथ तो अभी मतलब मैंने देखा कि अंदर सम्मान की लालसा है और ये अपमान या तिरस्कार भी करता है तो उसको फॉरगिव करने की क्वालिटीज कैसे डेवलप करें?
बहुत अच्छा है, आपने कुछ सदगुण प्राप्त करने का इच्छा कहते हैं जो अभी आपके पास नहीं है, आपके पास दुर्गुण है तो सदगुण करना चाहते हैं। सभी का अपना अपना पास में दुर्गुण है, लेकिन जो हमारे पास नहीं है कोई चीज उसको अगर पाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? जनरली कोई चीज आपके पास नहीं आप पाना चाहते हैं क्या करते हैं? अपने जिनके पास है उनके पास जाते हैं ना, उनका पास ये चीज है उनसे मांगते ना, क्या नहीं क्या नहीं है। तो जिनके पास है गुण है उनके शरण में जाइए, उनके सेवा कीजिए, मिल जाएगा। यस
महाराज, जैसे आपने बताया कि जब कृष्णा ने ग्वाल बालों को और गायों को देखा तो सारा विष चला गया, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि मतलब जो कृष्णा हमें भी देखने के लिए हमारे अंदर जो अनर्थ है वो भी एक तरीके से विष की तरह है तो वो मतलब चले जाएं और हम
मैं तो बता ना ऐसे जाता हूँ जाकर दर्शन करो, भगवान खड़े हैं तो दर्शन देने के लिए, विष उतारने के लिए अभी भी तैयार है ना।
जैसे हम रोज करते हैं दर्शन, लेकिन उसमें
रोज करते हैं लेकिन अभी तक नहीं मानते हैं कि मेरा विष उतरा है, एक बार इसी मान्यता के साथ कीजिए तो उतर जाएगा, है ना।
ओके लास्ट क्वेश्चन,
दिस इज लास्ट ना।
हरे कृष्ण महाराज, ये प्रश्न नहीं है एक जिज्ञासा है। ये जो विग्रह है वो लीला जो है गोवर्धन में हुई है रजवी वृंदावन में, तो ये विग्रह यहाँ पे कैसे पहुंचा?
मैं ही बात क्लास के अंत में कहा, अगर कर्तृपक्ष ने मुझे फिर एक कृपा कर चांस दे तो इस बात फिर कहूंगा, है ना। ये दो मिनट लास्ट क्वेश्चन का आंसर में नहीं चलेगा, उसके लिए एक वन मोर सेशन चाहिए।
हरे कृष्णा। तो आप सबने बहुत ध्यान पूर्वक सुना और बहुत से प्रश्न भी पूछे, तो आज आपको ये अमृत की जो धारा है उसकी पहली इंस्टॉलमेंट आपको कैसी लगी आपको हरि बोल बोल के बताना है।